Hare Rama. Gauranitaya, 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 ताय जय गौरनि ताय राधा श्याम सुंदर भगवान की
जय।
श्री कृष्ण बलराम की
जय।
श्री गौर निताय की
जय।
श्रील प्रभुपाद की
जय।
निताय गौर प्रेमानंद
हरि हरि
ओम नमो भगवते वासुदेवाय
वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 6 श्लोक क्रमांक 1 श्रीशुक उवाच
श्रीशुक उवाच
एवं स्तुत सुरगणे भगवान हरीश्वर
भगवान हरीश्वर
तेषामाविर्भूत राजन
वीरभुद राजन
सहस्रार्कोदयद्युति
सहस्रार्कोदयद्युति
तेनेव सहसा सर्वे
तेनेव सहसा सर्वे
देवा प्रतिहते क्षणा
देवा प्रतिहते क्षणा
ना पश्य नखं दिश
ना पश्य नखं दिश
शोणीमात्मानं च कुतो विभुम
शोणीमात्मानं च कुतो विभुम
विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा
विरिञ्चो भगवान् दृष्ट्वा
सह शरवेण तं तनुम्
सहं शरणेव तां तनुम्
स्वच्छामरकत श्यामा
स्वच्छामरकत श्यामा
कञ्जगर्भारुणे क्षणा
कञ्जगर्भारुणेक्षण
तप्त हेमावदातेन
लसत्कौशेयवाससा
प्रसन्नचारुसर्वाङ्गी सुमुखी सुन्दरभ्रुवम्
महामणिकिरीटेन
केयूराभ्यां च भूषिता कर्णाभरणनिर्मात
कपोलश्रीमुखाम्बुजा
काञ्जीकलापवलय
हारनूपुरशोभितम्
कौस्तुभाम्भरणां लक्ष्मी
बिभ्रतीवनमालिनीम्
सुदर्शनादिभिः स्वास्त्रे मूर्तिर्मद्विरुपासितम्
तुष्टावदेव प्रवर
सशर्वः पुरुषं परम् सर्वामरगणे साकं
सर्वाङ्गे रवनिं गते
श्रीब्रह्म उवाच
अजात जन्म स्थिति संयमाया
गुणाय निर्वाणसुखार्णवाय अणोरणिं मे परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते रूपं तवेतत् पुरुषर्षभेजम्
श्रेयोर्थिभिर्वेदिकतान्त्रिकेण
योगेन धातः सह न स्त्रिलोकान्
पश्याम्यमुष्मिन्नुहमेश्वमूर्तो
त्वय्यग्र आसीत् त्वयि मध्य आसि त्वय्यन्त आसीदधिमात्मतन्त्रे
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यम्
घटस्य मृत्स्नेव परः परस्मात् त्वं माययात्माश्रयया स्वयेदम् निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्ट
निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्टा
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो
पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो
गुणं यवायेप्यगुणं विपश्चित
गुणव्यवायेप्यगुणं विपश्चित।
बोलिए
नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशात देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्तापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रीमद् भागवत जो समस्त वेद उपनिषद शास्त्र पुराणों का पका हुआ फल है, श्रीमद् भागवत जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, ऐसे भागवत कथा हम सब इस अजमेर के नरवर नामक गांव में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। प्रायः इस संसार में सभी जीव भगवान से विमुख होकर दुखी हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कृष्णेर बहिर्मुख भोग वांछा करे निकटस्थ माया तारे जापटिया धरे। जब जीव भगवान से अलग होता है, जब यह आत्मा परमात्मा से दूर हो जाती है, तब यह जीवात्मा दुर्गति में फंसता है। दुख को प्राप्त होता है। कई बार संसार के लोग कहते हैं भगवान इतना दुख क्यों देते हैं, तो हम कहते हैं भगवान दुख नहीं देते हैं, ये संसार ही दुखालय है, ये जगत ही दुखालय है। तब संसार के लोग तर्क देते हैं, तो भगवान ने ये जगत क्यों बनाया। गाते हैं, दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। भगवान को दोष देते हैं, हे दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले की इच्छा नहीं है कि ये दुनिया बने, भगवान की कोई इच्छा नहीं है ये संसार बनाने की। हम जीव ही भगवान के पास ये संसार में आने की इच्छा रखते हैं। ये जीव, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा का अंश होने के नाते आत्मा का सर्वोच्च धर्म, आत्मा का सर्वोच्च कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। प्राय 99.99% भगवान से जितने भी आत्मा प्रकट होती हैं, वह सब भगवान की सेवा करती हैं। परंतु कुछ दुर्भाग्य जीव ऐसे होते हैं जो परमात्मा की सेवा करना नहीं चाहते हैं, खुद परमात्मा बनना चाहते हैं। आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती है। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं आत्मा परमात्मा हो जाएगी। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती है, यदि आत्मा के द्वारा परमात्मा का भजन किया जाए तो महात्मा बन सकती है। महात्मा बन सकते हो परंतु परमात्मा नहीं हो सकते हो। यह जीव भगवान की तरह भोग भोगना चाहता है, परंतु भगवान के धाम में भोग भोगने की सुविधा नहीं है। भगवान के धाम में तो भगवान की सेवा करके भगवान के भक्त आनंदित रहते हैं, परंतु जब जीव भगवान की सेवा करना नहीं चाहता है, तब उसकी इच्छा होती है कि मैं भी भगवान बनूं, मैं भी भगवान की तरह स्वामी बनूं और लोग मेरी सेवा करें। परंतु यह जीव कभी स्वामी हो नहीं सकता है, लेकिन अज्ञान के वश यह जीव स्वामी बनने के लिए इस भौतिक जगत में आना चाहता है। मैं हम सब की कथा कर रहा हूं। हरि बोल। वो उसको खड़ा कीजिए। भगवान से विमुख होकर इस संसार में सब लोग दुखी हो रहे हैं। हम सब भगवान के पास, भगवान की सेवा में स्थित थे, परंतु जब जीव भगवान को छोड़कर स्वयं संसार के भोग भोगना चाहता है, तब उस जीव के लिए भगवान को यह संसार बनाना पड़ता है। महात्मा गण दृष्टांत देते हैं, जैसे एक बालक अपने पिता को कहता है कि मुझे खिलौने से खेलना है। पिताजी कहते हैं पढ़ने में ध्यान दो, खेलने में समय बर्बाद मत करो, पढ़ो लिखो। लेकिन बच्चा जिद पकड़ता है, नहीं मुझे खिलौने चाहिए, मुझे खेलना है। पिताजी बहुत समझाते हैं, बहुत मनाते हैं, परंतु वह लड़का मानता नहीं है। तब अंत में पिताजी उस लड़के को खिलौने लेकर दे ही देता है, लेकिन एक बात जरूर कहता है कि जब इस खिलौने से खेलते खेलते मन भर जाए तब फिर से पढ़ने में ध्यान देना। ठीक उसी प्रकार इस संसार के लोग इस भौतिक जगत में आना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं। तब भगवान हम सब जीव को हम समझाते हैं कि इस जगत में दुख है, सुख नहीं है, परंतु उस बच्चे की तरह हम भगवान की बात नहीं माने। ये हम सब की बात कर रहा हूं। भगवान बहुत मनाए नहीं माने, तब परवश होकर, भगवान की कोई इच्छा नहीं थी, परंतु हमारी जिद से परवश होकर भगवान को यह संसार बनाना पड़ा। ये काहे को दुनिया बनाई का उत्तर यह है कि भगवान ने अपने इंटरेस्ट के लिए, भगवान ने अपने लिए यह संसार नहीं बनाया, हमारी इच्छा से हो परवश होकर भगवान को यह संसार बनाना पड़ा। नहीं तो भगवान चाहते हैं कि यह संसार के जितने भी लोग हैं वह सब भगवान के पास रहे। आज का कौन पिता अपने पुत्र को दूर रखना चाहेगा? पिता कैसा भी हो परंतु अपने पुत्र को अपने साथ रखना चाहता है तो वह तो जगत पिता है। अनंत कोटि जीवों के पिता है वह हम सबको अपने पास रखना चाहते हैं, परंतु हम भौतिक भोग भोगना चाहते हैं, इसलिए यहां पर भगवान ने भेजा। परंतु भगवान ने देखा कि निश्चित यह जीव इस संसार में आकर दुखी होगा, इसलिए भगवान ने यह संसार बनाने के साथ साथ एक मैनुअल बनाया, एक किताब बनाई। जैसे आप देखते होंगे नया टीवी या फ्रिज आप खरीदने जाते हो, जब वो नया टीवी आप लेते हो तो उस टीवी के साथ एक किताब आती है। उस किताब में लिखा होता है कि इस टीवी को कैसे इस्तेमाल किया जाए, और इस किताब को पढ़कर हमें टीवी को इस्तेमाल करना चाहिए। परंतु हम किताब को न पढ़े और उस नए टीवी में उंगली करने लगे, दो तीन दिन में बिगड़ जाएगा। ठीक उसी प्रकार भगवान ने यह जगत बनाया, इस जगत में कैसे रहना चाहिए और जगत में रहकर भगवान की प्राप्ति कैसे करनी चाहिए यह समझाने के लिए एक किताब बनाई। और वह किताब और कोई नहीं, वह किताब है वेद। भगवान ने वेद का निर्माण किया, जिस वेद को पढ़कर इस संसार में कैसे रहा जाता है, इस संसार में रहकर कैसे सुखी हुआ जाता है, वेदों में भगवान ने लिखा है। परंतु उस टीवी की तरह किताब को हम पढ़ते नहीं है और टीवी बिगाड़ देते हैं, वैसे भगवान के दिए गए वेद हम पढ़ते नहीं हैं और जीवन बिगाड़ देते हैं। सबका जीवन बिगड़ा हुआ है, सब लोग दुखी हैं। भगवान ने वेद और शास्त्र का निर्माण किया, इस संसार में किस प्रकार से सुखी होकर रह सकते हो और किस प्रकार से मरने के बाद भगवान को प्राप्त कर सकते हो, इसका उपाय वेद और शास्त्र में दिया गया है। तो हम सब जीवों का, मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि इस वेद और शास्त्र को पढ़े और वेद शास्त्र को पढ़कर हमारा जीवन व्यापन करे। कुछ लोग अपने आप को धार्मिक कहते हैं, परंतु धार्मिक वह है जो वेदों की बात को मानता है, और जो वेदों की बातों को नहीं मानते हैं वे अधार्मिक हैं, वो पापी है। भगवान ने नियम कानून बनाया है इस देश में। आप देखिए, गवर्नमेंट के नियम कानून का पालन करते हो तो आप अच्छे नागरिक माने जाते हो, परंतु गवर्नमेंट के बनाए हुए नियम कानून को तोड़ देते हो तो आप अच्छे नागरिक नहीं हो और वह गवर्नमेंट आपको जेल में डाल सकती है। यह वेद और शास्त्र में भगवान ने इस सृष्टि में रहने के नियम बताए हैं, और यदि उस नियम को हम तोड़ते हैं तो हम बहुत बड़े मुजरिम हैं, और मरने के बाद भगवान हमें उनकी जेल में बंद कर देंगे, और भगवान की जेल का नाम है नरक। नरक में डाल देते हैं। नरक से बचने के लिए, जीवन में सुखी होने के लिए और मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति करने के लिए वेद शास्त्र को पढ़ना चाहिए और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। ये वेद और शास्त्र सृष्टि के प्रारंभ से मात्र स्मृति में थे। स्मृति माने गुरु ने शिष्य को कहा, शिष्य ने अपने शिष्य को कहा, स्मृति में थे। परंतु द्वापर युग के अंत में भगवान सोचते हैं, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान, जीवेर कृपाए केला, जीवेर कृपाए केला कृष्ण वेद पुराण। माया मुग्ध जीवे नाही स्वत स्मृति ज्ञान। इस कलयुग में प्रायः लोगों की स्मृति कम होती है, कलयुग में बुद्धि कम है। वेद व्यास जी भगवान ने देखा कलयुग में लोग ज्ञान याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस वेद को लिपिबद्ध करना होगा। द्वापर के अंत में कलयुग के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी इस वेद को लिपिबद्ध किए। सृष्टि के प्रारंभ में एक वेद था, परंतु कृष्ण द्वैपायन ने इस वेद का विभाजन किया, वेदों का व्यास किया, इसलिए उनका नाम हुआ वेद व्यास। एक वेद को चार वेद में बांट दिया, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इस वेद को समझाने के लिए वेद व्यास जी ने 108 उपनिषद की रचना की। 108 उपनिषद। फिर भी वेद व्यास जी सोचते हैं, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रैन श्रुति गोचर। इस संसार के स्त्री शूद्र और द्विज बंधु, इन लोगों का अधिकार वेदों पर नहीं है, वेद नहीं पढ़ सकते हैं। तो उन लोगों के ऊपर कृपा करके वेद व्यास जी ने 100,000 श्लोक रचित महाभारत की रचना की। चार वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण, अनेक ग्रंथ, अनेक शास्त्र की रचना वेद व्यास जी ने की। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा। वेद व्यास जी के हृदय में इच्छा है कि कलयुग के आने वाले लोगों का कल्याण हो, और कलयुग के लोगों का कल्याण करने के लिए वेद व्यास जी अब पुराणों की रचना करने लगे। सर्वप्रथम वेद व्यास जी ने मार्कंडेय पुराण की रचना की, जिसमें 9,000 श्लोक, 10,000 श्लोक रचित ब्रह्म पुराण की रचना, दूसरा पुराण, वामन पुराण की रचना की, उसमें 10,000 श्लोक, लिंग पुराण जिसमें 11,000 श्लोक, ब्रह्मांड पुराण जिसमें 12,000 श्लोक, मत्स्य पुराण 14,000 श्लोक, भविष्य पुराण 14,500 श्लोक, अग्नि पुराण 15,400 श्लोक। श्लोक इसलिए गिना रहा हूं ताकि आपको पता चले वेद व्यास जी ने कितना परिश्रम करके कलयुग के जीवों को सुखी करने के लिए यह ग्रंथों की रचना की। अग्नि पुराण 15,400 श्लोक, नरसिंह पुराण की रचना की जिसमें 17,000 श्लोक, गरुड़ पुराण जिसमें 19,000 श्लोक, विष्णु पुराण जिसमें 23,000 श्लोक, वायु पुराण में 24,000 श्लोक, वराह पुराण में भी 24,000 श्लोक, नारद पुराण में 25,000 श्लोक, पद्म पुराण 55,000 श्लोक, 16 पुराण की रचना और 17वां पुराण स्कंद पुराण जिसमें 81,000 श्लोक। बताइए वेद व्यास जी ने 4 वेद, 108 उपनिषद, महाभारत, रामायण और 17 पुराण की रचना कर दी, लेकिन फिर भी वे खुद प्रसन्न नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। अब बताइए इतने इतने ग्रंथों की, इतने इतने पुराणों की रचना करने के बाद रचना करने वाला स्वयं सुखी नहीं है तो इसे पढ़कर लोग कैसे सुखी हो सकते हैं। वेदव्यास जी बहुत चिंतित थे, कलयुग के जीवों का कल्याण करने के लिए इतने इतने ग्रंथों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी संतुष्टि नहीं है। एक दिन की बात, बद्रिकाश्रम में बैठे थे, उसी समय उनके गुरु नारद मुनि आए। वेद व्यास ने नारद मुनि को कहा, प्रभु कलयुग के जीव के लिए इतनी इतनी रचना करने के बाद भी मैं प्रसन्न नहीं हूं, संतुष्ट नहीं हूं, कुछ कमी है और आप ही मेरी कमी बताइए कि मैंने यह ग्रंथों में क्या कमी रखी है। तब नारद मुनि ने वेद व्यास जी को डांटते हुए कहा कि वेद व्यास जी, आपने किताबें भर भर कर बहुत कुछ लिखा, अनेक पुराणों की रचना की, परंतु जो लिखना चाहिए वह तो आपने लिखा ही नहीं। कितना भी सुंदर ग्रंथ हो परंतु जगत पवित्रम तीनों भुवन को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का गुणगान जिस ग्रंथ में नहीं है, उस ग्रंथ को महात्मा कोवे का तीर्थ कहते हैं, यत वायसम तीर्थ। जिस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण की कथा नहीं, जिस ग्रंथ में भगवान की कृष्ण की लीला नहीं, वह ग्रंथ कोवे के तीर्थ के समान है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा तीनों भुवन को पवित्र करने वाली है। हे वेदव्यास जी, जब तक भगवान श्री कृष्ण की विशुद्ध लीला, कृष्ण के अवतार की कथा रचित श्रीमद् भागवत की रचना नहीं करोगे, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते हो और संसार में आने वाले लोगों को सुखी नहीं कर सकते हो। आप सुखी होना चाहते हो और कलयुग के लोगों को सुखी करना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की रचना करो। तब वेदव्यास जी ने नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन की अंतिम कमाई, वेदव्यास जी के जीवन का अंतिम ग्रंथ श्रीमद् भागवतम पुराण की रचना। इसलिए भागवत पुराण जो है, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, ये भागवत जो है सबसे बड़ा प्रमाण है, प्रमाणित ग्रंथ है, वेदांत सूत्र का भाष्य है ये भागवत। कुछ लोग कहते हैं भागवत को छोड़कर दूसरे पुराण पढ़ेंगे तो क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होगी? नहीं होगी। अरे भगवान की प्राप्ति की बात छोड़ दीजिए, आप सुखी भी नहीं हो सकते हो। भागवत को छोड़कर अन्य कोई भी पुराण पढ़ोगे, संतुष्टि नहीं मिलेगी, शांति और सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लिखने वाला सुखी नहीं बना, तब सुनने वाले कैसे बने? नारद मुनि ने कहा, वेदव्यास जी आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आपने शिव पुराण की रचना की, उसमें लिखा शिव जी भगवान है, वही संसार की सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं। देवी पुराण लिखा तो देवी ही भगवान है, वही सब कुछ है। गणपति पुराण लिखा तो गणपति ही सब कुछ है, वही भगवान है। और कलयुग में ये सब देवताओं के उपासक एकत्रित होंगे तब झगड़ा के अलावा कुछ नहीं करेंगे और उस झगड़े का फल आपको सिर पर आया है, इसलिए आप दुखी हो। इसलिए श्रीमद् भागवत की रचना करो। किम श्रुते बहुर्भिर शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमा वहे। भागवत को छोड़कर जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, ये बुद्धि में भ्रम पैदा करने वाले हैं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, स्कंद पुराण में यह बात आई है किम श्रुते बहुर्भि शास्त्रे पुराणेश्च भ्रमावये। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये सभी वेद शास्त्र उपनिषद का जो सार है श्रीमद् भागवत कथा सुनता है। भागवत में जो बताया गया है ये सर्वोच्च प्रमाण है, और भागवत को आधार में रखकर यदि आप धर्म का पालन करते हो तो आप वास्तविक धार्मिक हो। भागवत को छोड़कर अन्य किसी भी धर्म किसी भी ग्रंथ को पढ़कर धर्म का पालन करते हो तो वो पूर्ण धर्म नहीं है, सनातन धर्म नहीं है। सनातन धर्म का उपदेश मात्र भागवत में हुआ है, इसलिए यह भागवत सर्वोच्च ग्रंथ और भागवत का प्रमाण सबसे बड़ा प्रमाण। भागवत जितना प्रमाणित ग्रंथ है उतना और कोई ग्रंथ नहीं है। इसलिए इस संसार में जब भी किसी के मुख से हम उपदेश सुनते हैं तो सबसे पहले उसे कहना चाहिए यह कहां पर लिखा है, क्योंकि मुंडे मुंडे मति भिन्ना। इस संसार में सब लोग अपने अपने मन की बात करते हैं, तो अपने मन की बात शत प्रतिशत शुद्ध नहीं हो सकती है, किसी का मन गलत भी हो सकता है। इसलिए ये भागवत जो है परम प्रमाणित ग्रंथ है, और भागवत से यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है, भागवत में जो उपदेश दिए गए हैं उसका यदि कोई जीवन में पालन कर रहा है तो निश्चित वह धार्मिक है, वह सनातन धर्मी है। तो आइए हम इस परम प्रमाणित श्रीमद् भागवत ग्रंथ और भागवत में समुद्र मंथन कथा आज से प्रारंभ करते हैं। ऐसे तो भागवत में अनेक कथा अनेक उपदेश अनेक सिद्धांतों का वर्णन है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत में 10 विषय वस्तु का वर्णन करते हैं। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषणम उतयः मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। श्रीमद् भागवतम में सर्ग तत्व का वर्णन है। सर्ग अर्थात भगवान के द्वारा किस प्रकार से सृष्टि होती है इसका वर्णन भागवत में है। तत्पश्चात विसर्ग का वर्णन है, किस प्रकार ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है। तत्पश्चात स्थान का वर्णन है, इस ब्रह्मांड में कौन सा स्थान कहां पर है और उस स्थान पर कौन कौन लोग रहते हैं इसका वर्णन बताया गया है। तत्पश्चात भागवत में पोषण तत्व का वर्णन है, जिसमें भक्ति में पोषण देने के लिए अनेकों कथा सुखदेव गोस्वामी करते हैं, अजामिल वित्रासुर इत्यादि। तत्पश्चात भागवत में उतय तत्व का वर्णन, उतय कर्म वासना, किस प्रकार से व्यक्ति क्या कर्म करता है और उसे कौन सा फल प्राप्त होता है इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में बताया गया है। और उस तत्पश्चात उतय तत्व के बाद मनवंतरेशानु कथा, सुखदेव गोस्वामी मनवंतर की कथा सुनाते हैं, और मनवंतर की कथा के प्रारंभ में इस भागवत कथा के मूल श्रोता महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, स्वायंभुवोऽस्य ये गुरो वंशोऽयं विस्तराश्रुत यत्र विश्वसृजां सर्गो मनोनन्यावदस्वन। हे सुखदेव गोस्वामी, आप मन्वंतर की कथा सुनाइए। यस्मिन् मन्वंतरे ब्रह्मन्, किस मन्वंतर में भगवान का कौन सा अवतार हुआ कृतवान कुरुते करता। और भगवान ने मन्वंतर में अवतार लेकर कौन सा कार्य किया? हैते ते नागते द्यवान। और आने वाले मन्वंतर में भगवान कौन सा अवतार लेंगे और कौन सी लीला करेंगे, कृपया करके आप मन्वंतर की कथा सुनाइए। मन्वंतर का अर्थ होता है, ये मन्वंतर जो है कालवाचक शब्द है। जैसे काल अर्थात सबसे छोटा काल हम सेकंड को मानते हैं, 60 सेकंड होती है तब एक मिनट बनता है, 60 मिनट होती है तब एक घंटा होता है, 24 घंटे होते हैं तब एक दिन होता है, और ऐसे 30 दिन होते हैं तब एक महीना होता है, ऐसे 12 महीने होते हैं तब एक साल होता है, और ऐसे 4,32,000 वर्ष होते हैं तब एक कलयुग बीतता है, 8,64,000 वर्ष बीतते हैं तब द्वापर युग बीतता है, 12,96,000 वर्ष बीतता है तब त्रेता युग संपूर्ण होता है, और 17,28,000 वर्ष जब होता है तब सतयुग की अवधि समाप्त होती है। ऐसे कली, द्वापर, त्रेता और सतयुग, ये चारों युग मिलाकर 43,20,000 वर्ष होते हैं। ऐसे 43,20,000 वर्ष जब 71 बार बीतते हैं, अब इसका कोई गिनती नहीं हो सकता है। ये चार युग जिसे चतुर्युग कहा जाता है, ये चतुर्युग जब 71 बार ये चतुर्युग घूम जाते हैं तब एक मन्वंतर की अवधि समाप्त होती है, और उस एक मन्वंतर के काल तक भगवान का एक मन्वंतर अवतार होता है। भगवान के बहुत अवतार हैं, युगा अवतार, प्रत्येक युग में भगवान अवतार लेते हैं, शक्त्यावेश अवतार, किसी जीव में भगवान विशेष शक्ति देते हैं, पुरुष अवतार विष्णु के रूप में, और भगवान का एक अवतार है मन्वंतरा अवतार। मन्वंतर में जो भगवान मनु की रक्षा करने के लिए जो भगवान अवतार लेते हैं इसे मन्वंतरा अवतार कहते हैं। तो 71 चतुर्युग में भगवान का एक मन्वंतरा अवतार होता है। सुखदेव गोस्वामी कथा सुनाते हैं कि एक कल्प में चौदह मन्वंतर होते हैं। हम जिस कल्प में हैं, इस कल्प में प्रथम मनु हुए स्वयंभू मनु, ब्रह्मा जी के पुत्र जिसका नाम मनु था, जिसे स्वयंभू मनु कहा जाता है, ये प्रथम मनु हुए। दूसरे मन्वंतर में मनु हुए स्वारोचिस मनु, और इस मन्वंतर में इंद्र की पोस्ट पर रोचन थे, और दूसरे मन्वंतर में भगवान ने विभु नाम का अवतार लिया और आजीवन ब्रह्मचारी रहने वाले ब्रह्मचारी को भगवान ने उपदेश दिया। तीसरे मन्वंतर का नाम हुआ उत्तम, और उस उत्तम मन्वंतर में भगवान ने सत्यसेन नाम का अवतार लिया और अनेक अनेक राक्षसों का वध किया जो भगवान के भक्तों को भजन में बाधा देते थे। चौथे मन्वंतर का नाम हुआ तामस, इस मन्वंतर में भगवान ने हरि नामक अवतार लिया और भगवान हरि ने ग्राह के मुख में फंसे हुए गजेंद्र का उद्धार किया चौथे मन्वंतर में। पांचवा मन्वंतर जिसका नाम रैवत, इस रैवत मन्वंतर में भगवान ने वैकुंठ नाम का अवतार लिया और इस अवतार में भगवान ने वैकुंठ की रचना की। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि परीक्षित, छठे मनवंतर का नाम चाक्षुष मनवंतर। इस चाक्षुष मनवंतर में भगवान ने अजित नामक अवतार लिया और अजित नामक अवतार लेकर देव और दानव को मदद करके समुद्र मंथन कराया और समुद्र मंथन करके देवताओं को भगवान ने अमृत का पान कराया। अब हे परीक्षित, सातवें मनमंत्र के बारे में सुनो। जब सुखदेव गोस्वामी कहने गए तब महाराज परीक्षित ने हाथ ऊपर किया। हे सुखदेव गोस्वामी, रुकिए रुकिए, आप इतना फास्ट बोल रहे हैं। आप छठे मनमंत्र के बारे में कुछ कहे। यथा भगवता ब्रह्मन मथित क्षीर सागर यदर्थवा यदशाद्री ददारा अंबु बुरात्मना। आपने कहा कि चाक्षुष मनवंतर में देवता और दानों के द्वारा समुद्र मंथन हुआ और वह समुद्र मंथन मंदार पर्वत के द्वारा हुआ। तो प्रभु, मंदार पर्वत तो 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। ये 10,000 योजन लंबा चौड़ा मंदार पर्वत को मथनी बनाकर समुद्र को मथा, ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो अब इस कथा को थोड़ा रुकाइए और समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ आप मुझे विस्तार से बताइए। यदर्थवा यदश्चाद्री, ये समुद्र मंथन किस कारण से हुआ और समुद्र मंथन कैसे हुआ? और मंथन तो दो पार्टी ने किया था, जितनी मेहनत असुरों ने की उतनी मेहनत देवताओं ने की। जितने पढ़े लिखे देवता थे उतने पढ़े लिखे असुर थे, और जितने रूपवान देवता थे उतने रूपवान असुर भी थे। बलि महाराज अद्भुत रूपवान है। दोनों ने बराबर शक्ति लगाई, दोनों ने बराबर मेहनत की, दोनों ने बराबर अपना धन लगाया, परंतु उस मेहनत का फल मात्र देवता को मिला। अमृत का पान देवता ने किया, बेचारे असुरों को अमृत नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? मानो यह सुनकर परीक्षित महाराज के मन में संशय हुआ, ये भगवान भी पक्षपात करते हैं। होता है लोगों को ऐसी लीला को देखकर लगता है कि भगवान भी पक्षपाती हो गए। बेचारे दोनों ने मेहनत किया और अमृत एक को ही दिया। परंतु भगवान कभी पक्षपात नहीं करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, समोहम सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु सम अहम, सभी जीवों के प्रति मैं सम हूं। और रामायण में भगवान राम भी कहते हैं, सब मम प्रिय मम सब उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया। सब पर मेरा बराबर प्रेम है, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूं। मेरी दृष्टि में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं है। तब फिर भगवान की लीला में ऐसा क्यों होता है कि इंद्र की रक्षा करते हैं और देवता असुरों को उड़ाते रहते हैं? देखिए, भगवान इंद्र की रक्षा करते हैं और देव और असुरों को मारते हैं, इसमें भी भगवान की समता है। यदि भगवान देवताओं की रक्षा न करे और असुरों को अपना काम करने दे तो भगवान सम नहीं कहे जाएंगे। भगवान की समता है कि वह देवताओं की रक्षा करते हैं। आप इस बात को एक दृष्टांत से समझ सकते हो। मान लो आपकी एक ऑफिस है, कारखाना है, और उस कारखाने में दो पाली है, सुबह 6 से शाम को 6 और शाम को 6 से सुबह 6। कुछ कारीगर आते हैं सुबह 6 से शाम को 6 बजे तक काम करते हैं और 300 रुपया एक दिन का लेकर चले जाते हैं। परंतु एक कारीगर सुबह 6 से शाम को 6 और शाम को 6 से सुबह 6 दो पाली काम करता है, तो आप उसको कितना रुपये दोगे? 600। अब वो एक पाली वाला आए और आपको कहे कि आप सम नहीं हो, आप विषम हो, उसको 600 दे रहे हो और मुझे, उसको 1200 दे रहे हो और मुझे 600 दे रहे, सॉरी मुझे 300 और उसे 600 दे रहे, तो तो बताइए सम किसे कहा जाएगा? जो व्यक्ति जितना काम करता है उसे उतना फल दिया जाए उसे समता कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का प्रेम सबके प्रति है, परंतु इस संसार में रहने वाला भगवान को जितना प्रेम करता है भगवान उसे उतना प्रेम करते। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। हे अर्जुन, जो जिस प्रकार से मेरी भक्ति करता है, मेरे मुझे प्रेम करता है, मुझे शरणागत होता है, मैं उस प्रकार से उनकी रक्षा करता हूं। भगवान परम सम है और इस समता के कारण भगवान देवताओं को अमृत का पान कराए। परीक्षित प्रश्न पूछते हैं, यथामृतम सुरे प्राप्ते कश्चित यद भवन तत एतत् भगवत कर्म वदस्व परम अद्भुतम। हे प्रभु, आप कृपया करके समुद्र मंथन किस प्रकार से हुआ यह मुझे सुनाइए। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की जिज्ञासा को सुनकर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कथा प्रारंभ करते हैं। देखिए, कथा सुनने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए। केवल कथा सुनने के लिए नहीं, मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए जिज्ञासा अति आवश्यक है। मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि जिज्ञासा नहीं हुई तो वह मनुष्य मनुष्य नहीं, पशु माना जाता है। जिज्ञासा होनी चाहिए। परीक्षित महाराज की जिज्ञासा है, समुद्र मंथन कथा सुनाइए। तो समुद्र मंथन कथा गत अध्यायों में यह वर्णन है। एक समय की बात, दुर्वासा नाम के ऋषि का, दुर्वासा ऋषि का नाम तो आपने सुना होगा, जो वरदान देने में और श्राप देने में प्रवर है, एक्सपर्ट है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज करना चाहिए। श्राप तुरंत दे देते हैं, रोदित हो जाते हैं। ऐसे दुर्वासा ऋषि एक दिन भगवान को मिलने के लिए वैकुंठ गए। ये ऋषि मुनि समर्थ होते हैं, भगवान के धाम में जब चाहे तब जा सकते हैं, आ सकते हैं। वैकुंठ में भगवान के धाम में गए, भगवान को प्रणाम किया, भगवान ने आसन दिया, भगवान के साथ वार्तालाप हुआ। और जब दुर्वासा ऋषि वापस लौट रहे थे तो भगवान ने अपने गले में वैजयंती माला धारण की थी। भगवान ने अपने गले में जो माला थी वह माला अपने गले से निकालकर दुर्वासा मुनि के गले में डाल दी। भगवान ने अपना प्रसाद दुर्वासा मुनि को दिया, परम प्रसन्न हो गए और भगवान के गले की उस माला को अपने गले में धारण करके कृतार्थ होकर दुर्वासा मुनि वहां से वापस लौटे। दुर्वासा जी वापस आ रहे थे और बीच में 33 करोड़ देवी देवताओं का और स्वर्ग का राजा इंद्र ऐरावत के ऊपर सवार होकर स्वर्ग की ओर जा रहा था और दुर्वासा का सामने आना। दुर्वासा जी खड़े रहे, इंद्र ने अपना हाथी खड़ा रखा और हाथी पर बैठे बैठे प्रणाम किया। इंद्र ने प्रणाम किया और दुर्वासा जी प्रसन्न हो गए। देखिए, ये साधु संत भक्त वैष्णव मात्र प्रणाम से प्रसन्न हो जाते हैं, कभी कभी वैष्णव भी क्रोध करते हैं, कभी कभी भक्त में भी क्रोध आ जाता है, परंतु ये क्रोध जो है प्राणामांत क्रोध होता है। ये क्रोध कब तक होता है? सामने वाला जब तक प्रणाम नहीं करता है तब तक। प्राणामांत, प्रणाम अंत, जैसे ही सामने वाला प्रणाम कर देता है भक्त के मन से क्रोध चला जाता है। बड़ी बड़ी विपत्ति ही प्रणाम करने से चली जाती है। इसलिए जो भी हो हमें प्रणाम करना सीख लेना चाहिए। प्रणाम में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। प्रणाम करने से आप भक्त के हृदय को जीत सकते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने पितामह भीष्म के दिल को जीत लिया। बताइए, पितामह भीष्म उस महाभारत के युद्ध में अतिरथी महारथी थे। परीक्षित महाराज पितामह भीष्म को तिमिंगल कहते हैं। पिता महा में अमरे समरंजये देव व्रता आदि रथे तिमिंगले। उस महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना एक नदी नाले के समान और कौरवों की सेना समुद्र के समान विशाल थी, और उस समुद्र की रूपी सेना में पितामह कैसे थे? तिमिंगल के समान। तिमिंगल का अर्थ आप जानते हैं, तिमी नाम की एक मछली होती है। मछली बहुत प्रकार की होती है, हमारे समीर प्रभु जानते हैं, हम तो दो तीन मछली जानते हैं, डॉल्फिन, वेल, परंतु ये तिमी नाम की एक मछली होती है। ये मछली की विशेषता क्या है? ये मछली का शरीर 10,000 योजन लंबा होता है। ये बड़े बड़े महासागरों में पाई जाती है, और ऐसी 10,000 योजन लंबी चौड़ी मछली को जो खा जाए वो मछली कितनी बड़ी होगी? ऐसी तिमी नाम की मछली को जो अपने गले में अटका दे उसे तिमिंगल कहा जाता है। पितामह कैसे थे? कहते तिमिंगल के समान। वास्तव में महाभारत में वर्णन है, एक और पितामह को खड़ा रखा जाए और एक और कौरव पांडव दोनों सेना को, पितामह भीष्म अकेले सबको भारी पड़ जाएंगे। इतने बड़े धनुर्धर थे, पराक्रमी थे, और उस पितामह भीष्म को महाभारत के युद्ध में कोई नहीं मार सकता था। पिता शांतनु का वरदान था इच्छा मृत्यु का, अपनी इच्छा से वो मर सकते थे। वह पितामह भीष्म को कोई नहीं मार सकता था, परंतु युधिष्ठिर महाराज आखिर धर्म के पुत्र है ना, धर्म वेत्ता है, धर्म राज है, वे धर्म को जानते हैं। इसलिए महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में ही शंख बजने से पहले युधिष्ठिर महाराज अपने रथ से उतर गए और पितामह भीष्म के रथ के पास जाकर पितामह को प्रणाम किए। जैसे ही युधिष्ठिर ने और चारों भाइयों ने, पांचों पांडवों ने मिलकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया, पितामह भीष्म कहते हैं कि हे मेरे प्रिय पुत्रों, अच्छा हुआ आप यहां पर आ गए। और प्रणाम, वास्तव में मुझे मारने में किसी की योग्यता नहीं है, कोई मुझे मार नहीं सकता है, परंतु आप लोग युद्ध की अनुमति लेने और मुझे प्रणाम कर रहे हो, इसलिए मेरे मरने का उपाय मैं स्वयं बता रहा हूं। मुझे कोई नहीं मार सकता है, परंतु युधिष्ठिर, जिस दिन युद्ध करते करते मेरे सामने कोई स्त्री आकर खड़ी रहेगी, उस दिन मेरी सारी शक्ति हीन हो जाएगी और तब मुझे कोई भी मार सकता है। मरने का उपाय बता दिया, नहीं तो पितामह को कौन मार सकता था? अब देखिए, प्रणाम करने मात्र से पितामह ने अपना मरने का उपाय बता दिया। इसे कहते हैं प्रणाम का, प्रणाम की महिमा। ठीक उसी प्रकार द्रोणाचार्य को भी कोई नहीं मार सकता था। भगवान ने भेजा अर्जुन को, अर्जुन जाओ, कहा जाकर क्या करूं? बोले जाकर प्रणाम करना और द्रोणाचार्य आशीर्वाद देंगे, और फिर उसे ही पूछ लेना, गुरुजी बताइए आप कैसे मरेंगे। अर्जुन गए, क्योंकि गुरु को कौन मार सकता है? कितना भी बड़ा शिष्य हो, गुरु के सामने थोड़ी ना टिक सकता है। जिस गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को धनुष विद्या सिखाई, उस द्रोणाचार्य को अर्जुन मारने में समर्थ नहीं है। कृष्ण ने भेजा, जाओ अर्जुन प्रणाम करना। अर्जुन गए, द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, कहा वत्स विजयी भव, और आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, बोलो क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा, गुरु जी ज्यादा तो नहीं चाहिए, परंतु इतना बता दीजिए आप कैसे मरोगे। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि अर्जुन, जिस समय मैं मेरे पुत्र का अनिष्ट खबर सुनूंगा, उस समय मेरी सारी शक्ति क्षीण हो जाएगी और मुझे कोई भी मार सकता है। अपने मरने का उपाय, कहने का तात्पर्य यह है, प्रणाम करने से वैष्णव को, साधुओं को जीत लिया जाता है। यहां पर इंद्र ऐरावत के ऊपर बैठा है और बैठकर दुर्वासा ऋषि को प्रणाम कर रहा है। दुर्वासा ऋषि ने आशीर्वाद दिया और इंद्र के प्रणाम से इतने प्रसन्न हुए, जो भगवान ने वैजयंती माला दुर्वासा मुनि के गले में डाली थी, वह दुर्वासा मुनि ने अपने गले से निकालकर इंद्र के गले में डाल दी। अब देखिए, ये दो प्रसाद, एक तो भगवान का प्रसाद और दुर्वासा ऋषि का प्रसाद इंद्र के गले में, परंतु इंद्र धन और पद के मद में आकर सोचने लगा कि हम तो स्वर्ग के राजा हैं, हम तो हीरे मोती जेवरात की माला पहनने वाले, ये फूलों की माला पहनकर क्या करेंगे। इंद्र ने अपने गले से वो माला निकालकर हाथी के गले में डाल दी। कुछ लोग होता है ना, मोटर गाड़ी को माला पहनाते हैं, मोटरसाइकिल को, कुछ लोग साइकिल को माला पहनाते हैं। इंद्र ने अपने गले से वो माला निकालकर हाथी के गले में डाली। अब हाथी क्या जाने माला क्या होती है, प्रसाद क्या होता है, उसने तो अपना सिर हिलाया, माला गिरी नीचे और हाथी ने अपने पांव के नीचे उस माला को कुचल दिया। और दुर्वासा जी ये दृश्य देख रहे हैं। दुर्वासा के देखते देखते इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का भी अपराध किया और दुर्वासा ऋषि का भी अपराध, भगवान का अपराध और भगवान के भक्त का अपराध। तुरंत दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया कि इंद्र धन और पद के मोह में तो भगवान का और गुरु के इस निर्माल्य का, इस आशीर्वाद का अपमान कर रहा है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, जिस धन और पद के कारण तुझे यह अभिमान आया है, वह धन भी चला जाए और वह पद भी चला जाए। देखिए, जीवन में एक चीज हम सबको ध्यान में रखनी है, कभी भी भगवान और भगवान के भक्त का अपराध न हो। भजन करते हुए भजन करने वाले साधक का यदि अपराध हो गया, वैसे तो हमारा भजन बहुत सूक्ष्म है, इतने बड़े भजनी भी नहीं है हम लोग कि रात दिन भजन करते हैं, 2 घंटा माला जप लेते हैं, वह भी जबरदस्ती, आचार्यों का कहना है इसलिए। और अब तो समाज में लोग प्रभु प्रभु कहते हैं, नहीं माला जपेंगे तो लोग क्या कहेंगे, उस हिसाब से माला जपते हैं। और उसमें भी यदि अपराध कर दिया तो भक्ति से विमुख हो जाएंगे। भगवान और भगवान के भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग भगवान और भक्तों का अपराध करते हैं, इसका कारण धन और पद। ये धन जो है व्यक्ति को अंधा बना देता है। ये मनुष्य बहुत अच्छा है, परंतु मनुष्य के पास जब धन आ जाता है तो वह अंधा हो जाता है, वह देखता नहीं है। देखता, प्रभुपाद जी कहते हैं, वे केवल अंधा ही नहीं, अंधा और बहरा हो जाता है, सुनता भी नहीं। लोग समझाते हैं, सुनाते हैं, परंतु सुनते भी नहीं है जिसके पास धन होता है। ये धन लक्ष्मी जी का एक वैभव है। आप सब जानते होंगे, जैसे गणपति का वाहन है चूहा, शिव जी का बैल, कार्तिकेय का मोर, भगवान श्री कृष्ण विष्णु का गरुड़, वैसे लक्ष्मी जी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी जी ही जिस पर सवार होकर चलती हैं, उस वाहन का नाम है उल्लू। ये उल्लू जो होता है दिन को नहीं देखता है, रात को देखता है। जिस व्यक्ति के ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो जाती है वो व्यक्ति भी दिन को नहीं दिखता है, रात को ही दिखता है। दिन को न मंदिर में दिखेगा, न किसी तीर्थ स्थान में, न कथा में, न प्रवचन में, परंतु रात को बियर बार में दिखेगा। ये धन बहुत अच्छी चीज है, परंतु इसका इस्तेमाल आना चाहिए। यदि धन का इस्तेमाल ठीक से नहीं हुआ और धन का अभिमान हो गया तो व्यक्ति ही का पतन हो सकता है। प्रभुपाद जी धन को नशा कहते हैं, नशा से भी निम्न है यह धन, क्योंकि शराब का नशा तो जब आप पीते हो पेट में जाती है तब नशा चढ़ता है, परंतु यह धन को खाने की जरूरत नहीं, पॉकेट में आ जाता है तो व्यक्ति एक फुट ऊपर हो जाता है। पॉकेट में भी नहीं, बैंक में होता है कितना किलोमीटर दूर, परंतु व्यक्ति को इतनी हवा चढ़ जाती है, हवा जानते हैं, जिसके पास धन होता है वह हवा में रहता है। वास्तव में इस संसार में जितने भी मनुष्य हैं उसको परेशान करने वाली यह हवा है। यदि यह हवा न हो तो व्यक्ति बहुत सुखी हो सकता है। दुख का कारण ही हवा है। एक बार मैं कह रहा था सूरत में, एक गुरु और शिष्य दोनों रास्ते से जा रहे थे, तो रास्ते में है कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे। फुटबॉल तो आप जानते हैं, दो टीम होती है, 11 यहां पर 11 यहां पर, 11-11 लोग होते हैं। ये 11 खिलाड़ी जो होते हैं फुटबॉल को वहां धकेलते हैं, ये 11 खिलाड़ी यहां से वहां धकेलते हैं। तो बेचारे 11 और 11, 22 खिलाड़ी फुटबॉल को बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं, बहुत पीटते हैं। तो फुटबॉल की हालत को देखकर शिष्य ने गुरुजी को पूछा, गुरुजी ये फुटबॉल को ये लोग इतना मार रहे हैं, इतना मार रहे हैं, इसमें दोष किसका है? ये 11 खिलाड़ी का दोष है या ये 11 खिलाड़ी का दोष है? बेचारा फुटबॉल इतना मार क्यों खा रहा है? तब गुरुजी ने कहा, देखो ये 11 का भी दोष नहीं है और ये 11 खिलाड़ी का दोष नहीं है, दोष जो है फुटबॉल के अंदर जो हवा है इसका दोष है। यदि उस फुटबॉल में हवा ना हो तो भाई कौन मार सकता है उसे? ये हवा ही परेशानी का कारण बनती है। ये धन और पद की जो हवा है ये हवा ही दुख का कारण बनती है। आप देखिए इंद्र को कितना बड़ा दुख का कारण बनेगी, बेचारा भिखारी हो जाएगा। एक दिन स्वर्ग का राजा 33 करोड़ देवी देवताओं को ऑर्डर करने वाला, ये दुर्वासा के श्राप से एक थोड़ी सी हवा से स्वर्ग से च्युत हो जाए। धन होना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु वह हवा नहीं होनी चाहिए। हवा माने अभिमान नहीं होना चाहिए, धन का और पद का अभिमान नहीं होना चाहिए। इंद्र को जिस धन और पद का अभिमान था, उस अभिमान के कारण दुर्वासा और भगवान का अपराध किया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, सारा धन चला जाए और ऐश्वर्य चला जाए। दुर्वासा के मुख से यह श्राप की बात सुनकर अब असुर लोग तो यही ताक में रहते हैं कि कब देवताओं की शक्ति कम हो और हम उसके साथ युद्ध करें और स्वर्ग को जीत ले। और असुरों के जासूस सभी जगह पर घूमते रहते हैं और पता चला कि इंद्र को श्राप मिला है, उसकी शक्ति हीन हो गई है। और उस समय असुरों ने चढ़ाई की स्वर्ग ऊपर और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। उस समय बृहस्पति ने कहा, देवताओं के गुरु यदि अपनी जान बचाना चाहते हो स्वर्ग छोड़कर भागो, नहीं तो जीवित नहीं रह पाओगे। बलि महाराज उस समय असुरों के चक्रवर्ती सम्राट थे और स्वर्ग के ऊपर विजय प्राप्त किया, इंद्र समेत सभी देवी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया। बलि महाराज स्वर्ग के राजा हुए और यहां पर इंद्र भिखारी होकर दर दर भटक रहा है। अब कब व्यक्ति करोड़पति से रोड़पति, कब रोड़पति से करोड़पति, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए हवा नहीं होनी चाहिए। ये हवा बहुत आ रही है, इसलिए हवा बहुत याद आ रही है। हवा ही परेशानी का कारण। कल देखिए कितनी अच्छी कथा चल रही थी, आज हवा ही बिगाड़ रही है। तो बलि महाराज राजा बने और इंद्र एक ही झटके में करोड़पति से रोड़पति हो गया। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अहंकार नहीं होना चाहिए। सब दिन होत न एक समान, सूरदास जी ने बहुत सुंदर पद लिखा है। एक दिन राजा राज हरिशन, एक दिन राजा राज हरिशन, संपत्ति में रुसमा, हो तन एक समान, सब दिन हो तन एक समान। सब दिन एक समान नहीं होते हैं। एक दिन हरिश्चंद्र पूरे भूमंडल के चक्रवर्ती सम्राट थे। ये सारी दुनिया हरिश्चंद्र के इशारे से चलती थी और वही हरिश्चंद्र को एक दिन काशी की बाजार में जाकर भीख मांगना पड़ा, खरीद लो कोई मुझे। सबके जीवन में दिन एक समान नहीं होते हैं, इसलिए अभिमान नहीं होना चाहिए। इंद्र स्वर्ग से च्युत हुआ और जो लोग बेटर फैसिलिटी का उपभोग करते हैं और उसे जब गरीबी में रहना पड़ता है तो बहुत कष्ट होता है। गरीब लोग कैसे भी करके एडजस्ट हो जाते हैं, परंतु ये अमीरी में रहने वाले कभी असुविधा भी हो जाए तो फिर एडजस्ट नहीं होते। इंद्र को बहुत कष्ट हुआ और इंद्र स्वर्ग प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी को के पास जाकर इंद्र कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप 33 करोड़ देवी देवताओं के वरिष्ठ हो और मेरे अपराध के कारण स्वर्ग से च्युत हो गया हूं, कृपया करके आप मुझे स्वर्ग वापस दिलाइए। ब्रह्मा जी डांटे, इंद्र तुम बहुत गलती करते हो, एक नहीं बार बार गलती करते हो। आप देखिए भागवत में सबसे ज्यादा इंद्र की गलती है और इस बार तुमने भगवान और भगवान के भक्त का अपराध किया है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। तो अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्र, तुम्हारा दुख मात्र भगवान ही दूर कर सकते हैं, मात्र भगवान। तो इंद्र ने कहा आप भगवान के पास मुझे ले चलिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है चलो, और सब देवी देवताओं को साथ में बुला लो। इंद्र ने सभी देवी देवताओं को बुलाया और ब्रह्मा जी ने शिव जी को फोन किया कैलाश में। भोलेनाथ पधारिए, हमको जाना है भगवान के पास। शर्वेण ताम तनुम, शिव जी को क्यों बुलाया? क्योंकि भगवान के पास जाकर भगवान को प्रकट करना था और भगवान तब तक प्रकट नहीं होते हैं जब तक कीर्तन न किया जाए, और कीर्तन तब तक पूर्ण नहीं होता है जब तक नाचा न जाए, नृत्य न किया जाए। और नाचने में सर्वश्रेष्ठ शिवजी, कृष्ण के बाद यदि कोई नाचना जानता है तो वह है शिवजी। ये आज के माइकल जैक्सन, प्रभु देवा, जावेद जाफरी, ये क्या नाचते हैं? नाचना शिवजी जानते हैं, सभी प्रकार का नाच। नाचने में भी बहुत प्रकार होते हैं, कुछ लोग नाचना नहीं जानते। कौन सा नाच कहां होना चाहिए यह भी बुद्धि होनी चाहिए। मंदिर में कैसे नाचा जाता है, गणपति विसर्जन में कैसे नाचा जाता है, रथ यात्रा में कैसे नाचते हैं, ये सब अलग अलग नाच होता है। शिवजी कीर्तन में कैसे नाचा जाता है यह भी जानते हैं। शिवजी जब प्रलय करते हैं तब भी नाचते हैं, अपने हाथ में त्रिशूल और त्रिशूल में आठों दिशा में जो दिग्गज हैं सभी दिग्गजों को त्रिशूल में फंसाकर त्रांडव नृत्य करते हैं। शिवजी जानते हैं सभी प्रकार का नाच, लेकिन कौन सा नाच कहां करना है शिवजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और हमारे कुछ भक्त यह त्रांडव नृत्य कीर्तन में करने लगते हैं और बेचारे कुछ लोग प्रेम से कीर्तन करते हैं तो वो साइड में हो जाना पड़ता है नाचना भी एक कला है। ये जो माता जी यहां पर नाचती हैं इसे नृत्य कहते हैं, इसे कीर्तन नृत्य कहते हैं। हमारे रंगभूषण प्रभु भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, तो आज तो प्राय लोग भांगड़ा के अलावा कुछ जानते ही नहीं है, बस नाचना माने ऐसे ऐसे। नाच में भी कला होती है, भक्तों को सीखनी चाहिए। शिव जी को पास यह कला है, इसलिए प्राय ब्रह्मा जी को जब भगवान के पास जाना होता है तो शिव जी को पहले बुलाते हैं, अच्छा लगता है। शिव जी को बुलाया, शिव जी ब्रह्मा जी इंद्र और सभी देवी देवता क्षीर सागर के तट पर गए और क्षीर सागर के तट पर जाकर सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। आइए आपकी किताब खोलिए, अब प्रथम श्लोक। श्री शुक उवाच एवं स्तुत सुर गणे भगवान हरीश्वर तेषाम आविर्भूत राजन सहस्तारकोदय द्युति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि शिव जी ब्रह्मा जी अनेक देवी देवता मिलकर क्षीर सागर में के तट पर गए और क्षीर सागर के तट पर जाकर पुरुष सूक्त नामक स्तुति की। भगवान को प्रकट करने के लिए स्तुति होती है, और वह स्तुति कैसी होती है? हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, हे
गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद,
राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद,
राधे प्रकट करना है सब लोग प्रेम से। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद,
कृष्ण गोविंद गोविंद,
कृष्ण गोविंद,
सभी लोग प्रेम से गाइए।
राधे गोविंद गोविंद।
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोविंद
हरे गोपाल राधे कृष्ण 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 गोविंद गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद
कृष्ण Govinda Govinda Gopal Nandanal Radhe Govinda Govinda Gopal Nandanal Govinda
Govinda Govinda Gopal Nandanal Radhe Govinda Govinda Gopal Gopal Nandanal Gopal Nandanal Gopal Nandanal Gopal Nandanal
Prem
se gaiye sabhi log
Gopal Nandanal Gopal Nandanal Gopal Nandanal Gopal Nandanal Krishna Govinda Govinda Gopal Nandanal Radhe Govinda Govinda Gopal Nandanal Krishna Govinda Govinda Gopal Nandanal Radhe Govinda Govinda Gopal Nandanal Govinda Govinda Gopal Nandanal
Govinda 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 Gopal Nandanal Govinda Govinda Gopal Nandanal
Govinda Govinda Gopal
Nandanal Radhe
हो
जागी तक दा
कोतर सावेर लाला मोहे सावे काहे कोतर सावेर लाला मोहे काहे कोतर सावे मेरे घर
राधे
मेरे घर
राधे
मेरे घर कब हूँ आवे सावरिया मोहे काहे कोतर सावे सो गई और कोय गई मैं सो गई और कोय गई मैं गई और खोय गई मैं
सोय गई और खोय गई
मैं मधुर बजाई गई बांसुरिया मोहे काहे को तरसावे
मधुर बजाई गई बांसुरिया
मेरे घर का बहू न आवे काहे को तर सावे रे लाला मोहे काहे को तर सावे काहे को तर सावे रे काना मोहे काहे को तर सावे मेरे घर
राधे
मेरे घर
राधे
मेरे घर कब हूँ आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे होल चलू तो चलो न जावे होल चलू तो चलो न जावे जावे भागो तो जाके सासुरिया मोहे काहे को तरसावे भागो तो जाके सासुरिया मेरे घर बाबू न आवे जावरिया मोहे काहे को तरसावे
मेरे घर बाबू न आवे सावरिया मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे रे लाला मोहे काहे को तरसावे
काहे को तरसावे लाला मोहे काहे को तरसावे
मेरे घर
राधे
मेरे घर
राधे
मेरे घर बाबू न आवे तब पियु पियु चमक पुकारत चातक पियु पियु पोती कंडिया तब गड़ गड़ नब हो कड़ाका हम घनन गिरिवर शिखर भवे तब गणपत परण भरण पद मुगर नव भर सुंदर श्याम मेरे दिल रंग भर सोने श्याम मेरे दिल रंग भर
सोने यशाड़ू सारम विमलारम
पनिवहारं दलदारं दाडोरडंकारं मयूरपुकारं चलिततारं विस्तारं नालहिसंवारं व्यास्यपारं नंदकुमारं निरप्यारी हे निरप्यारी पहरादे प्यारी
हे बलिहारी गोकुण आवो गिरधारी रे धीरे गोकुण आवो गिरधारी रे धीरे गोकुण आवो गिरधारी
ब्रज की सब बाला रूप
रसाला
ब्रज की सब बाला रूप रसाला करिबे हला नंद लाला
राधे
लाला विपद
हरिया धर पर जन सर कर करवट घर में करे ते करे हरिहर सूर्य वार यवार अति मनहर हरि सूर्य वि हरा करे निरपर नर त्रवट त्रवट पट घूंघट गणपतरण पद गे गण रव पद फरार फरार पट घूंघट रंग भर सुंदर राम रमे दिर रंग भर सुंदर राम रमे दिर रंग भर सुंदर राम जोन गोकुलियो यमुने गम तू नदी हन जमुना जमुना ज लागे खारी जय मरवाला निहारे वे अरे रे ते तो सीध ने कराया श्यामला यशाढ़ुजारम वेगवलारम परिवहारम दलदारम डोरडंकारं मयूरपुकारं चलिततारं विस्तारं नालहिसंवारं व्यास्यपारं नंदकुमारं निरप्यारी निरप्यारी हे निरप्यारी कहराधे प्यारी मैं बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी तुम गोकुल आवो गिरधारी तुम गोकुल आवो
कृष्ण चंद्र भगवान की
जय
राधा रानी की
जय
जय श्री राधे तो इस प्रकार देवताओं के द्वारा भगवान को स्तुति हुई और जब जब स्तुति की जाती है तब तब निश्चित भगवान प्रकट होते हैं इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं एवं स्तुत सुरगणे एवं इस प्रकार किस प्रकार जैसे हमने अभी किया उस प्रकार अथवा गत अध्याय में बताया गया उस प्रकार एवं स्तुत स्तुति की स्तुति का अर्थ होता है ऐसी प्रार्थना जिसमें भगवान के नाम गुण रूप कृपा का वर्णन हुआ हो और निश्चित स्तुति के द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं इतिहास प्रमाण है जिन जिन भगवान ने भक्तों की स्तुति जिन जिन भक्तों ने भगवान की स्तुति की है उन भक्तों के सामने भगवान निश्चित प्रकट हुए हैं इसी अध्याय के प्रारंभ में इस स्कंद के प्रारंभ में तृतीय अध्याय में एक हाथी ने भगवान को स्तुति की बेचारा वह हाथी मगरमच्छ के मुख में फंसा हुआ था और मरते समय अंतिम समय में वह हाथी ने भगवान को बहुत सुंदर स्तुति की और स्तुति से भगवान प्रकट हो गए भागवत के प्रथम स्कंद में कुरुवंश की सभा में द्रौपदी की साड़ी निकाली जा रही थी, निर्वस्त्र करने का प्रयास दुर्योधन दुशासन के द्वारा, परंतु जैसे ही द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को स्तुति की तुरंत भगवान प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण रासलीला के प्रसंग से अप्रकट हुए, परंतु जैसे ही गोपियों ने भगवान की स्तुति की तुरंत भगवान प्रकट हुए। स्तुति के द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। प्रथम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, रथ पर आसीन है उद्धव और सात्यकी जी बैठे हैं, आदेश देने की देरी है। उस हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे भगवान को देवी कुंती ने स्तुति की, नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरे प्रकृते पुरम अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिर्वस्थितम माया जवनिकाचनम याघोक्षजम व्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दशा नटो नाट्य धरो यथा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः यथा ऋषिकेण खलेन देवकी कंसेन रुद्धा सुचीरम सुचारपिता विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शनाद सत सभायाम वनवास कृच्छत मृदे मृदे नेक महारथास्त्रे द्रोणस्य तच्चास्म हरे भी रक्षिताम। अनेक श्लोकों में देवी कुंती ने भगवान की स्तुति की। जो भगवान कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका जाने के लिए तैयार रथ पर बैठे थे, परंतु कुंती की स्तुति को सुनकर भगवान कृष्ण इतने प्रसन्न हुए अपने घर नहीं गए, उस देवी कुंती के घर पर ही रुक गए। भगवान को यदि हमारे घर पर रुकाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं, स्तुति करनी होगी। एवं स्तुतः, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार से स्तुति हुई। किसने स्तुति की? वॉल्यूम बढ़ाइए। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आप वॉल्यूम बढ़ाना मत भूलें, नहीं तो मेरा गला बैठ जाएगा। कंजूसी मत कीजिए। क्योंकि जब बोलते हैं तो पता नहीं रहता है वॉल्यूम बाहर कितना है क्या है, घर पे जाकर पता चलता है अरे आज तो पूरा बंद ही हो गया है। आप खर्च नहीं करेंगे तो मुझे खर्च करना पड़ेगा। साउंड सिस्टम लाते हैं तो यजमान जी कहते हैं इतना खर्च करना पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो यहां से खर्च करना पड़ेगा। तो एवं स्तुतः, स्तुति हुई। किसके द्वारा स्तुति हुई? कहते हैं सुर गणे, बहुवचन में शब्द है, अनेक सुर माने देवताओं के द्वारा स्तुति हुई। देवताओं ने स्तुति की और स्तुति के द्वारा तेषाम आविर्भूत राजन, हे राजन तेषाम उस देवताओं के बीच में भगवान आविर्भूतम आविर्भूत हुए। तब मानो पूछा जाए कौन आविर्भूत हुआ? कहते हैं भगवान आविर्भूत हुए। तब कुछ लोग प्रश्न कर सकते हैं कौन से भगवान? बहुत दुख की बात है, मुसलमान को यदि पूछा जाए भगवान कौन है, कहते हैं एक अल्लाह। क्रिश्चियन धर्म वाले हैं उनको पूछा जाए भगवान कौन है, कहते हैं एक जीसस क्राइस्ट। आप हिंदू को पूछिए भगवान कौन? गणपति भी भगवान, शिव जी भी भगवान, ये देवी भगवान, वो देवता भगवान, ये पितृ भगवान, वो भगवान, तुम भी भगवान, हम भी भगवान, सब लोग भगवान। ये है हिंदुओं की धारणा। अब भाई क्रोध मत करो, कम करो थोड़ा, आपने तो बढ़ा ही दिया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम।
बढ़ाने को कहा तो पूरा बढ़ा दिया। मुझे एक घटना याद आई, मैं गुजरात से मुंबई जा रहा था और उस समय नई नई ट्रैवल्स एयर कंडीशन बस शुरू हुई थी, तो हमने भी उसमें टिकट ली। वैसे साधारण 250-300 रुपये की टिकट होती है, एसी बस में 600 रुपया टिकट, हमने 600 रुपया देकर एसी बस में बैठे बैठे तो बेचारे बस का एसी भावनगर से नारी गांव तक पहुंचे तो एसी बंद हो गया, तो सब लोगों ने चिल्लाया, इतना पैसा हम लोगों ने दिया है, एसी बंद हो गया, एसी बंद हो गया। बस वाले ने कहा देखो मशीन है हमारे हाथ में थोड़ी ना, बंद हो गया क्या करे। लेकिन जब सब लोग चिल्लाए तो गैरेज में लेकर गया, एसी को रिपेयर कराया और फिर इतना तेज एसी रख दिया। अब गर्मी की, ये गर्मी की सीजन थी, सब लोग को ठंड चढ़ गई और सब लोग यहां से ब्लोअर एसी का बंद किए, तो बस का कंडक्टर आया, ब्लोअर किसी को बंद नहीं करना है, यदि आप एसी बंद रखोगे हमारा मशीन बिगड़ जाएगा, चलो खुला रखो। सब लोग सुबह बस से निकले, बर्फ होकर निकले, ऐसा तो नहीं कर रहे हो, बढ़ाने को कहा तो पूरा बढ़ा दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।
हे राजन, एवं स्तुत सुरगणे, देवताओं के द्वारा स्तुति होने से तेषाम आविर्भूत, उन लोगों के बीच में प्रकट हुए कौन, कहते हैं भगवान। कौन से भगवान? तब एक आचार्य कहते हैं भगवान पूर्ण षाड्गुण्य युक्त इति। मैं ये कह रहा था हमारे भारत में सबसे बड़ी कंफ्यूजन भगवान कौन। यद्यपि जितने भी महात्मा हुए भारत में हुए, जितने भी वेद और शास्त्र का निर्माण भारत में, जितने भी भगवान के अवतार भारत में, परंतु भारत वाले को इतना पता नहीं भगवान कौन है। सब लोग कंफ्यूज हैं और उसमें भी गांव में कुछ गुरु आते हैं, कहते हैं ये भगवान, भावुकता से ठग कर चले जाते हैं। देखिए भगवान कौन है ये भावुकता से नहीं देखना है, ज्ञान से बुद्धि से निर्णय करना है भगवान कौन है। यहां पर भगवान शब्द आपके श्लोक में आया है, इसलिए मैं आपको बताऊंगा भगवान कौन है। भागवत के प्रसंगों से आपको जानने मिलेगा भगवान कौन, जिसमें है 6 प्रकार के गुण पूर्ण मात्रा में होते हैं वह भगवान। और ये 6 गुण कौन से और ये गुण किस में है, एकमात्र कृष्ण में। इसलिए भगवान शब्द जो है कृष्ण के लिए है, कृष्ण के लिए रिजर्व शब्द है। कहते हैं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान को 3 संबोधन देते हैं, भगवान हरि और ईश्वर। एक श्लोक में 3 बार भगवान को इंडिकेट किया गया है। कहते कथम भूतम, भगवान कैसे, कहते हरि। वे भगवान जो है उनका एक नाम है हरि। भगवान विष्णु का एक नाम हरि है। हरि का अर्थ होता है हरति इति हरि, जो अपने भक्तों का सभी दुख हर ले उसे हरि कहते हैं। भगवान के शरणों में जो चला जाता है उनका दुख भगवान हर लेते हैं। इसलिए तो भगवान शिव रामायण के प्रारंभ में ही कह चुके,
मंगल भवन य मंगल हारी,
मंगल भवन मंगल हारी,
मंगल भवन य मंगल हारी,
मंगल भवन मंगल हारी,
मंगल
कवहु सुदशरथ अजि रवि हारी द्रवहु सुदशरथ अजि रवि हारी मंगल भवन य मंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल को हरते हैं ये हरि जो है कृष्ण जो है अमंगल को हर लेते हैं और मंगल प्रदान करते हैं। ऐसे दशरथ के पुत्र हमारे ऊपर द्रवित हो ऐसी प्रार्थना शिवजी करते हैं। ये शिवजी समझ गए ब्रह्मा समझे परंतु हम नहीं समझ पाए। अब देखिए जब इंद्र स्वर्ग से च्युत हो गए तो ब्रह्मा सभी देवताओं को लेकर किसके शरण में गए विष्णु के पास। इसका अर्थ है इंद्र 33 करोड़ देवी देवता और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं भगवान विष्णु। भागवत से यह सीखना है और वह भगवान विष्णु कैसे हैं कहते हैं हरि जो दुख हर लेते हैं। हरि का और एक अर्थ होता है हरि शब्द अनेक अर्थ दुई मुख्यतम इफेक्ट में कुछ गड़बड़ है। सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन हरि का एक अर्थ होता है सुंदर जो अपनी सुंदरता के द्वारा सबके मन को हर ले उसे भी हरि कहते हैं। भगवान की सुंदरता अद्भुत है अद्भुत सुंदर। कृष्ण सर्वाति सुंदर सर्वांग सुंदर। एक संत तो कहते हैं कृष्ण ही सुंदर बाकी सब छछुंदर। बात भी सत्य है अद्भुत सुंदरता। ब्रह्मा जी ने कह दिया कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम करोड़ों करोड़ों कामदेव जिसको देखकर मूर्छित हो जाते हैं मदन को भी मोह लेते हैं। कामदेव का एक नाम है मदन मदन को भी मोह लेते हैं। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे चढ़ी गोपी मनोरथे मन मथे रमन मथे नाम धरे मदन मोह नाम धरे मदन मोह चढ़ी गोपी मनोरथे मनमथे र मन मथे नाम धरे मदन मोहन। कहते गोपियों के मन रूपी रथ के ऊपर जो सवार रहते हैं जो मदन को भी मोहित कर लेते हैं इसलिए कृष्ण का एक नाम हुआ मदन मोहन। मोहन नाम है सुंदर है कृष्ण विष्णु इसलिए हरि कहा जाता है। और हरि का एक अर्थ चोर भी होता है हर लेना चुरा लेना। और हमारे भगवान तो चोरी करने में एक्सपर्ट है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम चोराग व्रजांग नानाम दुकुलपित चोरम। माखन की चोरी करते हैं छाछ की चोरी करते हैं गोपियों के वस्त्र को भी चुरा लेते हैं। इतना ही नहीं बहुत चोर देखे हैं कूलर चुरा लेते हैं एसी चुरा लेते हैं चप्पल चुराते हैं किसी का गहना चुराते हैं टीवी चुराते हैं किसी की किडनी चुरा लेते हैं कुछ डॉक्टर भी चोर होते हैं। परंतु हमारे ब्रज में जो चोर आया है ये तो दूसरों का हृदय ही चुरा लेता है। हार्ट ही चुरा लेता है। किसका चुराया? कहते हैं श्री राधिकाया हृदयस्य चोरम चोराग्य गर्मणम पुरुषम नमामि। श्रीमती राधा रानी का हृदय चुरा कर भाग रहा है। अरे ये चोर नहीं, ये तो दुनिया के सभी चोरों का सरदार है, इसको प्रणाम करना चाहिए। चोर है, हरि का अर्थ होता है चुराना। कहते हैं हरि, एक आचार्य बहुत सुंदर कहते हैं, एवं स्तुतो अपि दुर्लभो भगवान कथम आविरात। भगवान जो है स्तुति करने पर भी कभी कभी प्रकट नहीं होते हैं। आज मान लो आपने सुना स्तुति करने से भगवान प्रकट हो जाते हैं, और कल सुबह स्तुति करोगे भगवान प्रकट हो जाएंगे? भगवान को प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। एवं गोस्वामी गिद्धलाल जी कहते हैं, स्तुतो अपि दुर्लभो भगवान, स्तुति से भी भगवान दुर्लभ कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कथम आविरास तत्र, फिर भी भगवान यहां पर कैसे आविर्भूत हुए? तब वे कहते हैं क्योंकि भगवान जो है हरि है, और इस श्लोक में हरि का अर्थ बताते हैं, भक्त दुख हरण स्वभाव तद अर्थम इति अर्थ। क्योंकि भगवान का एक स्वभाव है, कृष्ण का, विष्णु का एक स्वभाव है, क्या? वे अपने भक्तों के दुख का हरण कर लेते हैं। भगवान अपने भक्तों का दुख नहीं देख सकते। तो यहां पर यह बात इस आचार्य की टीका से पता चलती है कि भगवान स्तुति से प्रकट नहीं हुए। ऐसा नहीं है कि हम स्तुति करेंगे भगवान को प्रकट होना ही होगा, नहीं। जीवन भर तक स्तुति करो भगवान प्रकट नहीं होंगे। परंतु भगवान के हृदय में एक गुण है कारुण्यता का। भगवान अपने स्वभाव से मजबूर है कि अपने भक्त का दुख देख नहीं सकते हैं, इसलिए भगवान प्रकट होते हैं। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, फिर से मैं एक बार कह देता हूं कि भगवान ऐसा नहीं है कि जैसे 10 रुपया खर्चा कर दिया भगवान आ जाएंगे, नहीं। हमने स्तुति कर दिया भगवान आ गए। स्तुति करना हमारा कर्तव्य है, परंतु भगवान हमारे सामने आते हैं क्योंकि उसमें एक गुण है, क्या? वे भक्त के दुख को नहीं देख सकते हैं। भक्त के दुख को नहीं देख सकते हैं इसलिए भगवान आते हैं, और इसलिए भगवान को हरि कहा गया है। ये भगवान वैसे तो बहुत प्रकट करने में तकलीफ होती है, परंतु क्योंकि हरि है, अपने भक्त इंद्र इत्यादि का दुख भगवान देख नहीं सके, इसलिए भगवान उसके सामने प्रकट हुए। तब गोस्वामी गिरिधर जी कहते हैं, ठीक है प्रकट हो गए, परंतु प्रकट होने के बाद भी यदि सामर्थ्य न हो, सामर्थ्य अभावे कथम संभवती। मानो कि आप कुछ मुसीबत में फंसे हो और कोई व्यक्ति आपके सामने प्रकट हो, कोई आ जाए, परंतु वह आपको छुड़ाने में समर्थ न हो, तो वो व्यक्ति क्या काम का? भगवान यहां पर प्रकट हुए हैं, परंतु देवताओं के दुख का दूर करने में असमर्थ है, तो वह भगवान का प्राकट्य क्या काम का? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर, ये भगवान प्रकट हुए हैं और वे ईश्वर है। इसका अर्थ है कि देवताओं का दुख दूर करने में समर्थ है। भगवान भी है, हरि भी है और ईश्वर भी है। ईश्वर का अर्थ होता है नियंता, कंट्रोलर। इस श्लोक से हम जान सकते हैं, श्रीमद् भागवत प्रमाण ममलम, ईश्वर कौन है? सीधा जवाब होगा विष्णु, क्योंकि ये सभी देवता विष्णु के सामने खड़े हैं। और ईश्वर अजित परमेश्वर, ईश्वर का एक अर्थ होता है परमेश्वर, परम परमेश्वर एकमात्र भगवान विष्णु है। तो देवताओं की स्तुति से देवताओं के दुख को देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए, भगवान हरि और ईश्वर उसे कहा जाता है। परंतु कहते हैं वे प्रकट तो हुए लेकिन कैसे दिखते थे, सहस्त्र अर्क उदय द्युति। सहस्त्र अर्क, अर्क का अर्थ होता है सूर्य, ये सूर्य का प्रकाश अनंत अपरिसीम है। एक सूर्य का प्रकाश हजारों लोगों को जला देता है, ऐसे सहस्त्र सूर्य यदि मिल जाए कितना प्रकाश होगा। कहते हैं भगवान जब प्रकट हुए तो भगवान के शरीर से इतना प्रकाश निकला, कहते हैं एक साथ सहस्त्र सूर्य का प्रकाश जितना होता है उतना प्रकाश भगवान के शरीर से निकला। सहस्त्र अर्क उदयद्युति, हजारों हजारों। परंतु ये सूर्य का प्रकाश तो तीखा होता है, कष्टदायी होता है। सूर्य का प्रकाश, हम सब सूर्य के नीचे बैठे हैं तो हमें कष्ट हो रहा है। भगवान का जो प्रकाश है तीखा नहीं है, मीठा है। जैसे दो प्रकार के बल्ब होते हैं, एक ये सूर्य जैसा बल्ब और एक सफेद बल्ब होता है। और सफेद बल्ब थोड़ा अच्छा होता है। वैसे भगवान के अंदर से जो प्रकाश निकला अनंत अपरिसीम प्रकाश। हे राजन, इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधन दे रहे हैं। राजन, हे राजन, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने जब आप गर्भ में थे और भगवान ने आपको जैसे दर्शन दिया था वैसे ही यहां देवताओं को दर्शन दिया है। अश्वत्थामा ने 6 ब्रह्मास्त्र छोड़े थे, 5 पांडव और 1 अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में, जिस गर्भ में महाराज परीक्षित पल रहे थे। परंतु उत्तरा ने जैसे ही भगवान को प्रार्थना की, पाहि पाहि महायोगी देव देव जगतपते नान्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे देवाधिदेव, हे जगत के नाथ, ये अश्वत्था का ब्रह्मास्त्र मेरे गर्भ की ओर आ रहा है मुझे मारने के लिए, कृपया करके आप मेरे बालक की रक्षा करो। अभी त्रवती मामनाश मामे गर्भो निपात्यताम, मैं भले मर जाऊं परंतु मेरे गर्भ को एक खरोज भी न आए, ऐसी मैं आपको प्रार्थना करती हूं। मेरी आपसे प्रार्थना है मेरे बालक की, मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। उत्तरा की प्रार्थना को सुनकर भगवान श्री कृष्ण चक्र और गदा लेकर उत्तरा के मुख से उनके गर्भ में चले गए और उस गर्भ में रहे हुए परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया था। भागवत कथा के जो श्रोता है परीक्षित, ये कोई साधारण श्रोता नहीं है। हमारे इतिहास में प्रथम घटना जिस परीक्षित ने गर्भ में ही मंगला आरती की, भगवान का दर्शन। राजन शब्द का तात्पर्य राजन, जैसे आपने भगवान का दर्शन किया और फिर कभी नहीं हुआ, वैसे ये देवताओं ने भगवान का दर्शन परंतु बेचारे देख नहीं पाए। अगले श्लोक में कहते हैं तेने व सहसा सर्वे देवा प्रति हते क्षण। कुछ किताब में महसा पाठ है, भगवान तेन एव, भगवान की उस महसा प्रभा को देखकर, भगवान के शरीर से उस प्रकाश को देखकर सर्वे देवा, सभी देवताओं की इक्षणा प्रतिहत, आंखें बंद हो गई। होता है ना, सूर्य के सामने आप जाओगे तो आंखें ऐसे बंद हो जाती हैं, और 1000 सूर्य के सामने निश्चित आंखें बंद हो जाती हैं। तो भगवान के उस तेज को देखकर सर्वे देवा प्रतिहत इक्षया, सभी देवताओं की आंखें बंद हो गई और उससे न पश्यन खम दिश शोणी आत्मानम च कुटुंबिव। वह देवता, भगवान की बात तो दूर रही, दिशा की बात दूर रही, अपने अपने आप को भी नहीं देख पाए। भगवान के उस प्रकाश से देवता अपने आप को नहीं देख पाए, दिशा को नहीं देख पाए, तो भगवान को कैसे देख पाए। देखिए एक एक श्लोक में अनेकों उपदेश। न अपश्यन, देवता भगवान को नहीं देख सके, यद्यपि भगवान सामने है परंतु फिर भी देवता भगवान को नहीं देख सकते हैं। भक्तों, कुछ लोग कहते हैं हमें भगवान को दिखाओ, हम जब भगवान को देखेंगे तब ही मानेंगे। यहां 33 करोड़ देवता खड़े हैं, सामने भगवान है फिर भी नहीं देख पा रहे हैं, और हमारे जैसा तुच्छ पापी भगवान को देख सकता है? अरे इसके लिए तो भजन करना पड़ता है। यहां से यह बात साबित होती है कि मान लो यदि कृपा करके भगवान हमारे सामने भी आ जाए फिर भी उसे हम पहचान नहीं सकते। नटो नाट्य धरो यथा। जैसे ड्रामा करने के लिए कुछ कलाकार आते हैं तो हमारे अपने पहचान वाले भी को भी हम पहचान नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि योग माया समावृतम, क्योंकि भगवान जो है योग माया से आवृत है और जीव महामाया से आवृत है। भगवान को देखने के लिए दो पर्दा बीच में है, एक महामाया का पर्दा और एक योग माया का पर्दा। ये दोनों पर्दे जब तक हटते नहीं है तब तक भगवान दिखते नहीं है, और ये दोनों पर्दे को हटाने के लिए भगवान का भजन करना चाहिए। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से भगवान को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो सबकी आंखें बंद हो गई, चौंधिया गई, और किसी ने भगवान को नहीं देखा, तो क्या सब लोग ऐसे ही खड़े रह गए? तब सुखदेव गोस्वामी कहते नहीं नहीं, दो लोग ने भगवान को देखा। तीसरे श्लोक में कहते हैं विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहशर्वेण ताम तनुम, ताम उस भगवान के तनुम शरीर को, शर्वेण शिवजी और विरिंच शिवजी और ब्रह्मा जी ने देखा। दो लोग भगवान को देख पाए, ब्रह्मा जी और शिवजी, और किसको देख पाए? तो एक शब्द आया है ताम तनुम। ताम माने भगवान के, तनुम माने शरीर को। ये तन को शरीर भी कहा जाता है, शरीर को तन कहते हैं। देखिए भागवत के श्लोक से साबित होता है कि भगवान का तन है, भगवान का शरीर है, भगवान निराकार नहीं है। बताइए कहां निराकार यहां पर है? सीधा कह रहे हैं कि शिव जी और ब्रह्मा जी ने भगवान के शरीर को देखा, और यहां कुछ लोग भगवान के शरीर को नहीं देख सकते तो कहते निराकार। अरे मूर्ख, तू नहीं देख सकता है, जो देख सकते हैं वे तो बिचारे लिखे हैं ताम तनु। हम लोग भगवान को नहीं देख सकते हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान निराकार है। भगवान का बहुत सुंदर आकार है, बहुत सुंदर रूप अभी आएगा कि वो भगवान का शरीर कैसा था बताएंगे। भगवान का अद्भुत रूप है, परंतु लोग भगवान को निराकार, निराकार कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान को यदि साकार कहेंगे तो फिर आरती पूजा सब करना पड़ेगा, निराकार है तो फिर झंझट ही खत्म, क्योंकि रूप ही नहीं है तो क्या आरती करे, क्या पूजा करे, क्या प्रसाद चढ़ाए, है आलसी हो गए हैं। इसलिए आज के गुरु भी भगवान को निराकार बना देते हैं। भगवान निराकार नहीं, हालांकि भगवान को निराकार कहना यह गलत नहीं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। भगवान निराकार भी है, परंतु जितना सत्य भगवान निराकार भी है उतना सत्य भगवान साकार भी है, दोनों। वदन्ति तत्तत्व इदस तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्म इति परमात्मा इति भगवान इति शब्दते। बुद्धिमान व्यक्ति भगवान को तीन रूप से देखता है। भगवान एक है परंतु उसके तीन स्वरूप है, जैसे इलेक्ट्रिक सिटी एक ही होती है परंतु उसके तीन फेज होते हैं, इलेक्ट्रिक सिटी एक है उसके तीन फेज होते हैं, वैसे भगवान एक है उसके तीन फेज हैं। भगवान के एक साथ तीन रूप हैं, कौन से? कहते हैं कि भगवान साकार रूप से उनके धाम में भी है, परमात्मा के रूप में सबके हृदय में भी है, और ब्रह्म के रूप में संसार के कण कण में है। परंतु कुछ लोग भगवान को मात्र ब्रह्म मानते हैं, भगवान ब्रह्म, ब्रह्म ज्योति। ये गलत नहीं है परंतु ये अपूर्ण है। भगवान ब्रह्म है परंतु ब्रह्म के साथ साथ परमात्मा के रूप में हृदय में भी है। कुछ लोग भगवान को परमात्मा ही मानते हैं, ये गलत नहीं है परंतु ये अज्ञान अपूर्ण है, क्योंकि भगवान ब्रह्म ज्योति भी है, भगवान परमात्मा के रूप में है, और इसी के साथ साथ भगवान साकार भी है। एक साथ तीन फेज है उनके। शायद इस सिद्धांत को आप न समझ पाओ, एक दृष्टांत आपको दे दूं जिससे आप समझ सकते हो। नरवर जैसा ही एक गांव था, और उस गांव से 10-15 किलोमीटर दूर रेल की पटरी बिछाई गई। अब वर्षों से रेल नहीं थी, अब कृपा हो गई लालू प्रसाद यादव की, तो फिर गांव में रेल की पटरी बिछा दी। गांव वालों ने कभी रेल देखा नहीं था, ट्रेन कैसी होती है किसी को पता नहीं था। और उस दिन रेल का ओपनिंग था, शुभ मुहूर्त था, तो गांव वालों ने बैठकर मीटिंग किया, देखो हम सब लोग रेल को देखने जाएंगे तो खेती कौन करेगा, इतने सालों के बाद बारिश हुई है तब क्या करे, रेल को भी देखना है खेती भी करना है। गांव वालों ने सोचा, सरपंच ने कहा एक काम करो, हम तीन लोग को भेजते हैं उस रेल को देखने के लिए। ये तीन लोग जाएंगे, रेल को देखकर आएंगे और हमें बताएंगे रेल कैसी होती है। गांव वालों ने तीन लोगों को तैयार किया, सब लोग जाकर सो गए। उनमें से एक व्यक्ति ही रात को नींद नहीं आई, इतना अधीर था कि सुबह होने से पहले ही रात को ही दौड़ पड़ा 15 किलोमीटर दूर। अंधेरे का समय था और रेल आ रही थी, अंधेरे में दूर से रेल की लाइट जल रही थी। वो व्यक्ति ने दूर से देखा रेल, तो लाइट जल रही थी, केवल लाइट दिखा, बोले रेल माने ज्योति, वहां से रिटर्न वापस आ गया। गांव वाले ने पूछा रेल कैसी है, रेल कैसी है? बोले रेल ज्योति। कहते ना भगवान कौन, भगवान ज्योति। ये गलत नहीं है, रेल में लाइट होती है परंतु रेल में मात्र लाइट ही नहीं, उसके अलावा भी कुछ तो है। तो पहले व्यक्ति ने आकर गांव वालों को कहा रेल माने ज्योति। दूसरा व्यक्ति थोड़ा देर से गया और 15 किलोमीटर दूर गया, ट्रेन आ रही थी, और दूर से देखा रेल माने लाइट तो है परंतु लाइट के साथ डिब्बे जैसा कुछ है। यह देखकर वापस लौटा, गांव वालों को कहा रेल माने लाइट और डिब्बा, ट्रेन माने डिब्बा। फिर तीसरा व्यक्ति गया, उसने लाइट को भी देखा डिब्बे को भी देखा परंतु बुद्धिमान था, वे प्लेटफॉर्म के ऊपर चढ़ा, उस रेल के अंदर गया तो देखा पंखा भी है, खिड़की भी है, स्टेयरिंग भी है, टायर भी है, सीट भी है। और फिर वह गांव में आया, गांव वालों ने तीसरे से पूछा रेल माने क्या, बोले लाइट भी है डिब्बा भी है उसके अंदर सीट भी है खिड़की भी है और स्टेयरिंग और चक्के भी हैं। ये तीन लोगों ने रेल का, रेल कैसी है अपना अपना अनुभव दिया। अब आप लोग हृदय पर हाथ रखकर कहिए ये तीनों में से पूर्ण ज्ञान किसका है, पहले का, दूसरे का कि तीसरे का? तीसरे का। साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। वैसे भगवान के तीन फेज हैं, भगवान ब्रह्म के रूप में भी हैं, परमात्मा के रूप में भी हैं और साकार रूप में भी हैं। कुछ लोग भगवान को ब्रह्म ही मानते हैं, कुछ लोग भगवान को परमात्मा ही मानते हैं, परंतु कुछ लोग भगवान को ब्रह्म भी मानते हैं, परमात्मा भी मानते हैं और साकार भी मानते हैं। अब बताइए बुद्धिमान कौन है, भगवान को ब्रह्म मानने वाला, परमात्मा मानने वाला, या ब्रह्म परमात्मा और साकार मानने वाला कौन है बुद्धिमान? तीसरा व्यक्ति। तो इस प्रकार ये ज्ञान की उच्चतर सीमा है। ये बहुत बड़े सिद्धांत को मैं केवल साधारण दृष्टांत से आपको समझा रहा हूं, और उस बात को भागवत के इस प्रसंग में आठवें स्कंद के छठे अध्याय के तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, ताम तनुम। तन का अर्थ होता है शरीर। भगवान के शरीर को किसने देखा? विरिंच और शर्वेण, ब्रह्मा जी ने और शिव जी ने, शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान का शरीर देखा। तो मन में जिज्ञासा होती है, कथम भूतम शरीरम? शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने भगवान का शरीर देखा तो भगवान का शरीर कैसा था? तो अब कई श्लोक में भगवान के शरीर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं। कहते हैं, स्वच्छाम मरकत श्यामाम कंच गर्भार उणेक्षणाम। अब शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान को देख रहे हैं, और जिस प्रकार से शिव जी और ब्रह्मा जी भगवान को देख रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कॉमेंट्री दे रहे हैं, पता है ना, क्रिकेट के स्टेडियम में पिच के ऊपर दो बैट्समैन खड़े होते हैं, और दो बैट्समैन क्या कर रहे हैं वो रेडियो में कॉमेंट्री देते हैं। देखने वाले ये दो बैट्समैन शिव जी और ब्रह्मा जी, और कॉमेंट्री देने वाले सुखदेव गोस्वामी। भगवान कैसे हैं, रूप क्या है भगवान? कहते हैं, स्वच्छाम मरकत श्यामाम। स्वच्छ मरकत मणि के समान भगवान का शरीर है। ये मरकत मणि जो है नीले रंग की होती है, और वह जब स्वच्छ हो जाती हैं तो उसमें रिफ्लेक्शन, जैसे मिरर कांच होता है, कांच के समान अपना ही स्वरूप अपना शरीर उसमें दिखता है। भगवान का शरीर ऐसा है, नीले रंग का शरीर है और मरकत मणि के समान। ब्रज वृंदावन में कथा आती है कि जब गोप ग्वाल सखा ब्रज में गैया चराने जाते थे तो ऐसी हवा आती थी बाल बिखर जाते थे, तो कंघी से बाल बनाना होता था, कृष्ण को बुलाते थे, कृष्ण जरा पीछे घूम जाओ, कृष्ण की पीठ पे अपना बाल बनाते थे। कृष्ण की पीठ इतनी चमकती थी कि रिफ्लेक्शन आता था मरकत मणि के समान। तो कहते हैं, स्वच्छाम मरकतक श्यामाम। भगवान श्री कृष्ण का शरीर नीले रंग का मरकत मणि के समान, और कंज गर्भ अरुण इक्षिणम। इक्षिणम भगवान कृष्ण की आंखें कैसी हैं? कहते हैं लाल आंखें। कैसे, कैसी लाल आंखें? कहते कंज गर्भ। कंज का अर्थ होता है कमल, और कमल का गर्भ आपने देखा होगा, कमल के बीच में, कमल का गर्भ जैसा अरुण लाल होता है वैसी लाल भगवान श्री कृष्ण की आंखें हैं। अद्भुत आंखें, भगवान की आंखें लाल है, भगवान का शरीर स्वच्छ। स्वच्छ का एक अर्थ देखिए, एक एक श्लोक के ऊपर घंटों भर बोला जा सकता है, भागवत बहुत विशाल ग्रंथ है, परंतु श्रोताओं की कैपेसिटी के अनुसार सुनाया जाता है। मैं यहां पर एक श्लोक के ऊपर बोलता रहूंगा तो आप कहेंगे ये कैसे कथाकार है, आगे बढ़ ही नहीं रहे। एक बार हमारे गुरु महाराज ने हस्तिनापुर से द्वारका कृष्ण जाते हैं ये कथा कर रहे थे विस्तार से। पहला दिन हुआ हस्तिनापुर में भगवान खड़े हैं, ये हैं, दूसरा दिन वो, तीसरा दिन, छह दिन बीता। एक व्यक्ति ने कहा, ये छह दिन बीत गया फिर भी भगवान हस्तिनापुर में खड़े, द्वारका पहुंचे ही नहीं। लेकिन भागवत इतना विशाल ग्रंथ है, उसके एक एक श्लोक का आस्वादन होता है। अब देखिए, स्वच्छ एक शब्द आया है, भगवान का शरीर स्वच्छ है। स्वच्छ का एक अर्थ यह है कि भगवान के शरीर में किसी भी प्रकार की फोड़ी और फुंसा नहीं है। जैसे आज के लड़के को पोलियो का इंजेक्शन दिया जाता है, पंचर हो जाता है, भगवान के शरीर में कोई पंचर नहीं है। ऐसा नहीं कि यहां लग गया तो यहां कोई निशान है या कुछ है। बिल्कुल स्वच्छ मरकत श्याम, स्वच्छ शरीर है भगवान। भगवान के शरीर में एक भृगु जी के चिन्ह है, और श्रीवत्स चिन्ह है, लक्ष्मी जी का चिन्ह है। तो भगवान का शरीर नीला है, उनकी आंखें लाल है। तप्त हेमावदातेन लसत कोशेय वाससा, कपड़े कैसे पहनते हैं? कहते हैं पीले रंग के तप्त हेम, हेम का अर्थ होता है सोना, तपे हुए सोने के समान। सोने को जब तपाया जाता है तब वह पीला पीला हो जाता है, फ्लोरोशन येलो। तब तपाए हुए सोने के समान पीले रंग का वस्त्र भगवान ने पहना था। कृष्ण सदैव पीला वस्त्र पहनते हैं, पीताम्बर धारी हैं। तो मन में भक्तों को प्रश्न हो सकता है, कृष्ण पीले रंग के वस्त्र क्यों पहनते हैं? लाल नहीं पहनते, सफेद नहीं पहनते? कृष्ण पीले वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि वह राधा से बहुत प्रेम करते हैं, और श्रीमती राधा रानी के शरीर का रंग तप्त कांचन गौरांगी, वे तपाए हुए सोने के समान है। तो राधा से प्रेम करते हैं, राधा की याद आ जाए इसलिए भगवान श्री कृष्ण पीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। और कौशेय वाससा, कौशेय रेशम के कीड़े से जो वस्त्र बनता है, रेशमी वस्त्र भगवान ने पहना था। ये रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है। तो रेशमी वस्त्र, पीले रंग के वस्त्र भगवान ने पहने थे। और कहते हैं प्रसन्न चारु सर्वांगी सुमुखी सुंदर ब्रुवम, सर्व अंग, भगवान के सभी अंग प्रसन्न थे और उनका मुख प्रसन्न था, टेंशन में नहीं थे। यद्यपि सारे संसार को चलाने का काम भगवान विष्णु का है, संसार की बात छोड़ दीजिए, एक घर को चलाना होता है तो व्यक्ति टेंशन में रहता है। ये पूरी दुनिया को चलाते हैं परंतु बिना टेंशन के, प्रसन्न चारों सर्वा। और वास्तव में व्यक्ति कितना सुखी है उसके मुख से पता चलता है, उसके मुख पर प्रसन्नता है, हंसी है तो पता चल जाता है सुखी है। तो प्रसन्न चारु सर्वांगी, समस्त अंग प्रसन्न थे, सुंदर ब्रुवम, और भगवान की भौहें अद्भुत सुंदर थी। महामणि किरीटेन केयूर राभ्याम च भूषिताम, महामणि से युक्त उन्होंने किरीट मुकुट पहना था, मुकुट में महामणि लगे हुए थे, सुंदर सुंदर मणि से युक्त मुकुट था। केयूराभ्याम च भूषिताम, और भगवान की भुजा में, भगवान के हाथों में बाजू बंद थे जो बहुत सुंदर सुशोभित हो रहे थे। भगवान के हाथ में बाजू बंद थे, कहते हैं भूषिताम, वो बाजू बंद सुशोभित हो रहे थे। देखिए बहुत सुंदर सिद्धांत है, भगवान के हाथों में जब वस्त्र या कोई गहना आता है तो भगवान के हाथ में वह गहना पड़ने से वह गहने की सुंदरता बढ़ती है, भगवान की नहीं। भूषण 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 अंगम, भगवान जो है आभूषण के भी आभूषण है। इस संसार में किसी मनुष्य के ऊपर मनुष्य को अच्छा दिखने के लिए कपड़े पहनते हैं, गले में कुछ चैन पहनते हैं, इससे मनुष्य की शोभा बढ़ती है। भूषणों के द्वारा मनुष्य की शोभा बढ़ती है, परंतु भूषण जब भगवान के ऊपर आते हैं तब भूषणों की शोभा बढ़ती है, भगवान की शोभा से आभूषण भी आभूषित हो जाते हैं, भूषिता। और कर्ण आभरण निर्वात कपोल श्री मुख अंबुजम, भगवान का मुख अंबुज कमल के समान। देखिए भगवान के सभी अंगों की उपमा कमल के समान दे रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान कमल से करोड़ों गुना सुंदर है, परंतु अब इस जगत में लोगों ने कमल से ज्यादा सुंदर कोई फूल देखा ही नहीं है, इसलिए इस जगत के लोगों को समझाने के लिए कहा जाता है कमल के जितने सुंदर हैं, परंतु वास्तव में भगवान कमल से ज्यादा सुंदर है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने माधुर्य कांदिमनी नामक एक ग्रंथ लिखा है, उस ग्रंथ के अंत में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर रोते रोते भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर देना, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्या अपराध? मैंने आपके अंगों की उपमा कमल के साथ दी। प्रभु, आपके सामने ये कमल क्या है? परंतु संसार के लोग को समझाने के लिए कमल के साथ, वास्तव में भगवान की उपमा किसी के साथ हो ही नहीं सकती है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, मुझे याद नहीं है, परंतु बहुत वर्ष पहले हमने गुरु महाराज के मुख से सुना था। कहते हैं, उपमा हरि तनु देखी लजाही। इस संसार में जितनी भी उपमा है, उपमा दी जाती है कि इसकी चाल हाथी के समान है, तो ये हाथी जो है उपमा हुई। हरि तनु देखी लजाही, हरि का तन, हरि की सुंदरता जब ये उपमाओं ने देखा तब लज्जित होकर भाग गई। वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की भुजा को देखकर प्रायः किसी की भुजा की उपमा अजगर के साथ दी जाती है, सांप के साथ। कहते हैं सांप जो थे पहले रास्ते पर घूमते थे, परंतु कृष्ण का जन्म हुआ और कृष्ण की सुंदरता को देखकर सांप ने सोचा, अरे बाप रे बाप, ये कृष्ण के हाथ जो है मेरे से कोटि गुना सुंदर है। इसलिए ये सांप जो था कृष्ण की सुंदरता को देखकर बिल में जाकर छिप गया, शर्मा गया बेचारा, लज्जित हो गया। ये भक्त का भाव है। ये सिंह शेर जो थे पहले रास्ते पर घूमते थे, परंतु कृष्ण की कमर को देखकर सिंह को शर्म आ गई कि कृष्ण की कमर कितनी सुंदर है और हमारी कमर कृष्ण के सामने कुछ है ही नहीं। तो ये सिंह पहले रास्ते पर घूमते थे, कृष्ण की सुंदरता को देखकर सब लोग गुफा में जाकर घुस गए, छिप गए। इस प्रकार से बहुत अलग अलग उपमा देते हैं, तो ये उपमा भी भगवान को देखकर लज्जित हो जाते हैं। तो अंबुजम भगवान के अंगों की उपमा कमल के साथ, क्योंकि कमल से भी सुंदर भगवान के अंग है। और कहते हैं कर्ण आभृत निर्वात, भगवान के कान में जो कुंडल है वे हिलते रहते हैं। भगवान के कान के कुंडल हिलते रहते हैं क्योंकि भगवान कभी एक जगह पर ठीक से बैठ ही नहीं सकते हैं, बहुत चंचल है। कृष्ण जो है बहुत चंचल है, किसी के हाथ में नहीं आते हैं। भक्त लोग कितना प्रयास करते हैं पकड़ने का, लेकिन हाथ में नहीं आते हैं। भगवान के नेत्र मुख हिलते रहते हैं, इसलिए उनका जो कुंडल है कान का वह हिलते रहता है। परंतु सूर्य की किरण जब भगवान कृष्ण के कुंडल पर आती है और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वह प्रकाश कृष्ण के गाल के ऊपर जाता है, और वह गाल जब चमकता है तब कृष्ण की सुंदरता और बढ़ जाती है। अद्भुत लिखते हैं कृष्ण, कांची कलाप वलय हार नूपुर शोभितम। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के कमर में कर धनी है। ये शिवजी और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को देख रहे हैं, इसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। क्या देखा शिवजी ने ब्रह्मा जी ने? भगवान के कमर में एक कर धनी है और कलाप वलय, और उस करधनी में छोटी छोटी गुगरी लटकाई गई है जो आवाज कर रही है। हार नूपुर शोभितम, भगवान के पांव में नूपुर है और भगवान के गले में बहुत सुंदर हार है। कौस्तुभ आभरणम लक्ष्मीम, भगवान के गले में कौस्तुभ मणि है, वक्ष में वक्षस्थल में लक्ष्मी जी का चिन्ह है। बिभ्रतिम वन मालिनम, और भगवान ने बहुत सुंदर वनमाला धारण की है। भगवान को ये मोतियों की सोने की गहने की माला अच्छी नहीं लगती, हमारे भगवान को वन की माला बहुत पसंद है, वे वनमाला धारण करते हैं। अब सबको पता होगा यशोदा मैया कृष्ण को जब गैया चराने के लिए भेजती थी तो बहुत आभूषण पहनाती थी, ये मोती का हार, ये हार, वो हार, बाजू बंद सब। और कृष्ण जब घर से निकलते थे, जंगल में जैसे ही पहुंचते थे, कृष्ण के सखा उनके गले से सब कुछ निकाल लेते थे और उनके कुछ सका वन की माला बनाकर गले में पहनाते थे, कृष्ण के गाल के ऊपर बहुत सुंदर वह डिजाइन करते थे। वह एक सखा आता था, मनसुखा ये ठीक नहीं लग रहा है, चलो धो मुंह, कृष्ण फिर से मुंह धोते थे, फिर से डिजाइन करते थे। श्रीदाम आता था, ये ठीक नहीं लग रहा है, कृष्ण मुंह धो धोकर थक जाते थे, और ये लोग कृष्ण को सजाने में, कृष्ण का मेकअप करने में। ये भी एक भक्ति है, भगवान का श्रृंगार करना, वस्त्र पहनाना, आभूषण पहनाना, ड्रेसिंग करना, ये भक्ति है। तो इस प्रकार भगवान को वनमाला बहुत पसंद है। तत्पश्चात कहते हैं, सुदर्शन आदि भी स्वास्त्रे मूर्ति मद रूपासिताम। ये सुदर्शन इत्यादि भगवान के जितने भी अस्त्र शस्त्र है, आयुध है, ये सभी आयुध मूर्तिमान होकर भगवान के सामने खड़े हैं हाथ जोड़कर। ये सुदर्शन मूर्तिमान होकर खड़ा है, धनुष शंख चक्र गदा पद्म ये सब लोग खड़े हैं भगवान के सामने, शिव जी और ब्रह्मा जी देख रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान को शिव जी और ब्रह्मा जी ने देखा। अन्य जितने भी देवता थे ये भगवान को नहीं देख सकते थे, परंतु शिव जी और ब्रह्मा जी को देख सकते थे। इसलिए अब प्रश्न हुआ, मान लो महाराज परीक्षित ने पूछा, ठीक है भगवान को देखकर शिव जी ने और ब्रह्मा जी ने क्या किया? तब कहते, तुष्टाव देव प्रवह सशर्व पुरुषम परम सर्व अमर गणे साकम सर्वा अवनी गते। शिव जी ने, ब्रह्मा जी ने और 33 करोड़ देवी देवताओं ने भगवान को प्रणाम किया। अवनीम गते, अवनी माने पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर दंडवत प्रणाम किया। आपके मन में यह हो सकता है, भगवान को तो केवल शिव और ब्रह्मा ने देखा, तो सर्व अमर गणे अवनीम गते, सभी देवता प्रणाम क्यों किए? ये देवता भगवान को नहीं देख सकते थे, अपने गुरु को तो देख सकते थे, शिव जी को और ब्रह्मा जी को। तो शिव जी और ब्रह्मा को देखकर देवताओं ने प्रणाम किया। ये उपदेश हमारे जीवन में स्वीकार करना चाहिए। हो सकता है हम भगवान को नहीं देख रहे हैं, परंतु हमारे गुरुजन भगवान को देखते हैं और भगवान को देखकर भगवान को प्रणाम करते हैं। इसलिए उस गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए हमें भी प्रणाम करना चाहिए। अब ऐसा नहीं गुरु प्रणाम कर रहे और हम लोग पेड़ की तरह खड़े हैं, नहीं। गुरु के महाजनों, ये ना गतहस्य पंथा, महान जनों के पद चिन्हों पर चलते हुए भगवान को प्रणाम करना चाहिए। सब लोग ने अवनी पृथ्वी के ऊपर प्रणाम किया। ये अवनीम गते जो है, इसका अर्थ ये है कि जब शिवजी और ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया, सभी देवताओं ने प्रणाम किया, ऐसा नहीं देखा कि पृथ्वी के ऊपर मिट्टी लगी है या कुछ बिगड़ा हुआ कीचड़ है, नहीं, बस भगवान को देखकर लेट गए, दंड की तरह गिर गए। मान लो एक डंडा हो, खड़ा हो डंडा, उसको थोड़ा धक्का दिया जाए और जैसे डंडा गिर जाता है, वैसे डंडे की तरह गिर गए, इसलिए उसे दंडवत कहा जाता है। आज तो कुछ भक्त भगवान के मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं तो पहले साफ करते हैं, और यदि बिगड़ा हुआ है तो ऐसे प्रणाम करते हैं कि शरीर भूमि को स्पर्श नहीं होता है। अद्भुत प्रणाम हमने देखा है। एक भक्त ऐसा प्रणाम कर रहा था, आप इसी टाइट कपड़े पहनकर आया था और बेल्ट लगाकर एकदम स्त्री, मैं नाम नहीं लूंगा, परंतु उसने कैसे प्रणाम किया कि अपने कपड़े को जमीन पर स्पर्श नहीं होने दिया, ये दोनों अंगूठे के बल पर शरीर को रखा और ये हाथ रखा, ये हाथ आगे, ये हाथ और पीछे दो अंगूठा और नीचे हवा, और भगवान को प्रणाम किया। ये फॉर्मेलिटी है, ये हृदय से प्रणाम नहीं है। प्रणाम माने दंड की तरह गिर जाना, देखना नहीं क्या है, इसे वास्तव में प्रणाम कहते हैं। सभी भक्तों को भगवान को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम दो प्रकार के, दंडवत दो प्रकार के होते हैं, एक अष्टांग प्रणाम और एक पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम अर्थात पांच अंग भूमि को स्पर्श हो उसे पंचांग प्रणाम कहते हैं, और आठ अंग भूमि पर स्पर्श हो उसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। प्रणाम करने की विधि क्या है, शास्त्र में बताई गई है कि जितने भी पुरुष हैं, पुरुषों को भगवान को अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, आठ अंग भूमि पर स्पर्श होना चाहिए, परंतु स्त्री को मात्र पांचांग प्रणाम करना चाहिए, पांच ही अंग पृथ्वी को स्पर्श होने चाहिए। देखिए ये सिद्धांत है, कुछ स्त्रियां लेट जाती हैं उल्टा, ये ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। प्रणाम करने की विधि पंचांग प्रणाम अर्थात दो घुटने, ये दो घुटने दो हाथ और मस्तक, ये तीन भूमि पर, ये पांच अंग भूमि से स्पर्श हो इसे पंचांग कहते हैं, दो घुटने दो हाथ और मस्तक। और अष्टांग किसे कहते हैं, दो पैर दो घुटने एक छाती दो हाथ और मस्तक, आठ हो गए, दो दो पैर दो घुटने छाती दो हाथ और मस्तक, ये आठ चीज भूमि से स्पर्श हो इसे अष्टांग प्रणाम कहते हैं। माताओं को पंचांग और पुरुषों को अष्टांग, भगवान को प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करने की बहुत महिमा है हमारे शास्त्र में, परंतु प्रणाम करने की और एक विधि, कुछ लोग भगवान का मंदिर मानो यहां पर है तो सीधा प्रणाम करते हैं, पांव पीछे सिर आगे, परंतु भगवान को ऐसा सीधा प्रणाम नहीं होना चाहिए। ये दाहिना हाथ लेफ्ट हैंड साइड, ये हाथ भगवान की ओर रखते हुए प्रणाम करना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग हमारे इस्कॉन के भक्तों को देखकर कहते हैं, ये आपके भक्त ऐसा आड़ा प्रणाम क्यों करते हैं, प्रणाम सीधा करना चाहिए। परंतु इस्कॉन के भक्त जो कार्य करते हैं वे शास्त्र को पढ़कर एक एक चीज को समझकर कार्य करते हैं, वे भेड़िया ढसान की तरह चलते नहीं रहते हैं। आप गांव में रहने वाले जानते हैं कि भेड़िया ढसान, भेड़ बकरी एक साथ 50-100 भेड़ बकरी चलती है, और आगे की बकरी यदि कुएं में गिरी तो लाइन हो जाएगी 50-50 कुएं में। इस्कॉन के भक्त ऐसे नहीं है, तो रखकर लेफ्ट हैंड साइड को दाहिना ही कहते हैं ना, ये दाहिना हाथ भगवान की ओर रखकर प्रणाम करना चाहिए। तब आपके मन में प्रश्न होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान के सामने गरुड़ जी खड़े होते हैं। आप कभी दक्षिण भारत के मंदिर में गए होंगे, अब यहां मंदिर भी बनाते हैं तो शास्त्र के अनुसार नहीं बनाते हैं। शास्त्र में लिखा है मंदिर कैसा होना चाहिए, भगवान के बिल्कुल सामने गरुड़ जी होते हैं, गरुड़ स्तंभ, और भगवान के सामने देवता 24 घंटा खड़े रहते हैं। अब यदि हम भगवान को सीधा प्रणाम करेंगे तो मस्तक भगवान की बाजू, परंतु हमारा पांव गरुड़ जी के बाजू, देवताओं की बाजू, ये भगवान को कभी अच्छा नहीं लगता है। भगवान सोचते हैं ये सिर मेरे बाजू है और पांव मेरे भक्तों के बाजू, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। इसलिए हम जब दाहिना हाथ भगवान की ओर रखकर प्रणाम करेंगे, आड़ा प्रणाम करते हैं, तो न तो हमारा पांव देवताओं के बाजू जाता है, गरुड़ जी के बाजू जाता है, जिससे अपराध नहीं होता है, और साथ ही साथ भगवान को प्रणाम की विधि भी पूर्ण हो जाती है। तो ये भगवान को प्रणाम करने की विधि है, इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और समस्त देवता अवनिम गते, भगवान को गिर कर प्रणाम किया, 33 करोड़ देवी देवताओं ने प्रणाम किया भगवान विष्णु को। अब ये आपको बताने की जरूरत कहां है, आप तो कथा सुन ही रहे हैं ना। अब आप अपनी बुद्धि नहीं लगा सकते हो कि ये सब में बड़ा कौन है, श्रेष्ठ कौन है। ये 33 करोड़ ब्रह्मा शिव सब मिलकर जिसको प्रणाम कर रहे हैं वे सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षित ने पूछा कि ये सब देवता विष्णु को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, तब सुखदेव गोस्वामी इस श्लोक में कहते हैं पुरुषम परम। सुखदेव गोस्वामी जवाब देते हैं कि ये सभी देवी देवता विष्णु को इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि ये विष्णु जो है परम पुरुष है, परम ईश्वर है, ये विष्णु ही भगवान है।
सीधा जवाब। भागवत प्रमाण ममलम, भागवत में लिखा है यह, सातवें श्लोक में, परम पुरुष। वास्तव में पुरुष एकमात्र भगवान है, भगवान परम पुरुष है। और ये परम पुरुष को प्रणाम करना, यही सभी जीवों का कर्तव्य है। इस संसार में कुछ लोग, ये पुरुष शब्द आया है इसलिए कह रहा हूं, कुछ लोग अपने आप को पुरुष मानते हैं, ये स्त्री है हम पुरुष हैं, परंतु देखा जाए तो स्त्री भी स्त्री है और पुरुष भी स्त्री है। अब आप लोग कहेंगे ऐसा कैसे, आप तो ये पूरा लिंग ही बदल दिए हैं। हम लोग रेलवे का फॉर्म भरते हैं तो स्त्री के लिए फीमेल लिखते हैं और पुरुष के लिए मेल लिखते हैं, ये अज्ञान है। तत्व से देखा जाए तो सब स्त्री है, क्योंकि सब भगवान की प्रकृति है और प्रकृति स्त्रीलिंग है। इस संसार में जितने भी जीव क्या है, ये जीव भगवान की शक्ति है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्णदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इस संसार के समस्त जीव भगवान की शक्ति है। अब बताइए शक्ति पुरुष है या स्त्री है, स्त्री है कि नहीं? हम भगवान की शक्ति है तो शक्ति स्त्री है कि पुरुष? स्त्री है, भले पुरुष का शरीर है परंतु हम प्रकृति है, स्त्री है। पुरुष एकमात्र कृष्ण है। हमारे मारवाड़ में रहने वाली मीराबाई, आज भी मारवाड़ में उनका नाम गूंज रहा है। हमारे मारवाड़ में अनेक राणा आए, अनेक राजा आए, राज करके चले गए, परंतु आज भी पूछा जाए मारवाड़ किसका है तो एक ही उत्तर मिलेगा, मीराबाई का मारवाड़। मारवाड़ में रहने वाली परम भक्ता, राजपूत परिवार में जिसका जन्म हुआ था, परंतु जन्म से भगवान की भक्ति। एक दिन की बात, गांव में किसी की शादी हो रही थी, मीराबाई छोटी सी 5 साल की कन्या थी, और अपनी मां को कहा, माताजी मैं, मुझे भी विवाह करना है, मैं भी शादी करूंगी। तब मीराबाई की माता ने समझाते हुए कहा, बेटा बेटा तुम्हारी शादी तो हो चुकी है। बोले, माता किसके साथ? कहा, कृष्ण के साथ, गिरधर गोपाल के साथ। बस उस दिन से मीराबाई ने कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया, मरते दम तक कृष्ण ही उनके पति रहे। 5 साल की उम्र से मीराबाई कृष्ण की भक्ति करने लगी और पति के रूप में कृष्ण की पूजा करने लगी। और बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अनेक लोग आए परंतु एक ही बात, मेरे तो मात्र गिरधर गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। मीराबाई की कथा मैं आपको सुनाऊंगा, अभी तो बहुत दिन बाकी है, परंतु मैं ये पुरुष शब्द के ऊपर आपको बता रहा हूं। एक बार मीराबाई घूमते घूमते वृंदावन में गई, और उन दिनों वृंदावन में एक संत रहते थे, महान संत। मीराबाई की इच्छा हुई कि उस संत से मिलूं। जैसे ही मीराबाई उस संत के पास गई, द्वार पर रोक दिया गया। मीराबाई ने कहा, मुझे इस संत से मिलना है। द्वारपाल गए, उनके शिष्य, कहा, आपसे मिलने कोई स्त्री आई है, मीराबाई आई है। तब उस संत ने कहा, जाओ उस स्त्री को जाकर कह दो कि मैं किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं, मैं पुरुष हूं और किसी स्त्री से नहीं मिलता हूं। मीराबाई को कहा कि हमारे गुरुजी कहते हैं कि वो पुरुष है और किसी स्त्री से नहीं मिलते हैं। तब हमारी मीराबाई ने इतना ही कहा था कि आज तक मैंने सुना था कि इस संसार में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से प्रकट हो गया है, जाओ जाकर कहो। वे गए और उस संत को कहा कि ये स्त्री कह रही है कि आज तक मैंने सुना था कि इस दुनिया में एक ही पुरुष है, ये दूसरा पुरुष कहां से आया। तब उस संत ने कहा कि ये कोई साधारण महिला नहीं है। तुरंत वह संत खड़े होकर मीराबाई से मिलने के लिए गए।
ये है मीराबाई, और ये है मीराबाई का उपदेश। एक ही पुरुष इस संसार में, और वो है कृष्ण, बाकी सब प्रकृति है। कृष्ण परम पुरुष, यहां पर शब्द आया है। मानो पूछा कि ये 33 करोड़ देवी देवता विष्णु को क्यों प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि विष्णु ही परम पुरुष है, सबके ईश्वर है, स्वामी है। देखिए ये सभी देवता भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहे हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान को प्रणाम करना चाहिए। फिर भी लोग तर्क करते हैं, परंतु आप देखिए तर्क करोगे, तर्क का कोई एंड नहीं है। तर्को अप्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना, और पढ़ने बैठोगे तो पार नहीं पा पाओगे। तर्को प्रतिष्ठो स्मृतिम विधि विभिन्नम न सो मुनि यस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। ये धर्म का तत्व इतना गूढ़ है, धर्म का रहस्य इतना गूढ़ है, तर्क से नहीं पता चलेगा, श्रुति से भी नहीं। और यदि किसी गुरुओं को बुलाओगे और कहोगे क्या कौन भगवान, तो गुरु कहेगा मैं ही भगवान। ठगने वालों की कमी नहीं है, खुद भगवान बनकर बैठ जाते हैं। मुंडे मुंडे मति भिन्ना, सब लोग अलग अलग उत्तर देंगे। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, महाजनो येन गतहस पंथा। महाभारत में यह श्लोक आया है, बुद्धिमान व्यक्ति महान लोग जो कार्य करते हैं उसके पद चिन्हों पर चलते हैं। बताइए ब्रह्मा से कोई महान है, शिव जी से कोई महान है? शिव जी ने जो किया है वह करने में ही बुद्धिमानी है। शिव जी ने भगवान को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया, यह है बुद्धिमानी। इस प्रकार से शिव जी, ब्रह्मा और अनेक देवी देवता प्रणाम करते हैं। हम सबको भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने से जीवन के सभी दुखों से हम दूर हो सकते हैं। वास्तव में भगवान के वो प्रणाम की महिमा, भगवान के चरण की महिमा गोपियां जानती हैं। प्रणत देहिनाम पापकर्षनम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहिना प्रणत देहिनाम पापकर्षनम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत पापकर्षनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणकुचेशुना क्रिंदिरीचयम्। फणिफणार्पितम् फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृणकुचेशुना क्रिंदिरीचयम्। जय हो प्रणत देहिनाम पापकर्षनम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत प्रणत देहिनाम पापकर्षनम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम। प्रणत देहिनाम पापकर्षनम त्रिणचरानुगम श्रीनिकेतनम। फणिफणार्पितम् ते पदाम्बुजम् कृण कुचेषु न क्रिन्दिरेच्छयम्
पणिपणा ते पदाम्बुजम्
मणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणिकुचेषु न क्रिन्दिरेच्छयम्
भगवान के चरणों की, भगवान को प्रणाम करने की क्या महिमा है। गोपिया गोपी गीत में कहती हैं, प्रणत देही नाम पाप कर्षनम। इस संसार में जितने भी देही जीव है, देही माने देह में रहने वाला, हम सब देही हैं। हमारे सबके पास देह है, और जिनके पास देह है ये बात निश्चित है कि पूर्व जन्म में पाप किए हैं। यदि हमने पाप नहीं किए होते तो हमारे पास यह देह न होता, हम भगवान के धाम में होते। यह देह है इसका प्रमाण है कि हमने पाप किए हैं। परंतु कितना भी बड़ा पापी प्रणति, प्रणत देही नाम, यदि भगवान के चरणों में प्रणाम करता है तो भगवान उसके जीवन के पाप कर्षनम, सभी पाप कर्षित खींच लेते हैं। भगवान को प्रणाम करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अरे महाभारत में तो यहां तक कहा गया कि भगवान को एक बार प्रणाम करने से 10 अश्वमेघ जितना फल प्राप्त होता है। अश्वमेघ यज्ञ जानते हैं, कलयुग में तो असंभव है। एक नहीं 10 अश्वमेघ यज्ञ करने से जितना फल मिलता है उतना फल भगवान को एक बार प्रणाम करने से मिलता है, वेद व्यास जी ने महाभारत में लिखा। परंतु यह लिखकर वेद व्यास जी को तृप्ति नहीं हुई, इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में लिखते हैं, नहीं नहीं, 10 अश्वमेघी पुनरेति जन्म। 10 अश्वमेघ यज्ञ करने के बाद भी व्यक्ति को इस भौतिक संसार में दुख भोगने के लिए आना पड़ता है, परंतु कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर देता है तो इस संसार में कभी आना नहीं पड़ता। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये बारंबार माता के गर्भ में आना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये सभी दुखों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। देवता लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, हम सबको चाहिए भगवान को प्रणाम करें। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भगवान को प्रणाम नहीं किया, सो सिर कटी संबर तुला जोन नमत गुरु हरिपद मूला। मनुष्य जीवन प्राप्त करके गुरु और हरि के चरणों में अपना सिर झुकाता नहीं है तो उसका सिर सिर नहीं, तरबूज है, कलिंगर है, कद्दू, काट देना चाहिए उसे। कलिंगर का लाभ कब मिलता है, जब काटेंगे तब। कद्दू का लाभ कब मिलता है, काटेंगे तब। तो मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये मस्तक हरि और भगवान के सामने, गुरु के सामने झुकता नहीं है, वह सिर कुछ काम का नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात, संसार में लोग हजाम के सामने अपना सिर झुका देते हैं, अपनी पत्नी के सामने झुका देते हैं, परंतु भगवान के सामने नहीं झुका सकते। ये बड़े बड़े देवता भगवान के सामने झुक रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। हम सबको बुद्धिमान बनना चाहिए। शिव जी जिसकी भक्ति करते हैं, ब्रह्मा जिसकी भक्ति करते हैं, इंद्र जिसकी भक्ति करते हैं, उस भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। यह है परम पुरुष भगवान। इस प्रकार सभी देवता, देखिए क्रम, इंद्र का दुख दूर करने के लिए ब्रह्मा शिवजी समस्त देवी देवता क्षीर सागर के तट पर आए, भगवान नहीं थे, भगवान को प्रकट करने के लिए स्तुति की, स्तुति के द्वारा भगवान प्रकट हुए, भगवान प्रकट हुए तो सबने प्रणाम किया, अब प्रणाम करने के बाद पुनः स्तोतुम प्रवुत्तो, फिर से भगवान को स्तुति कर रहे हैं। देखिए भगवान जब प्रकट नहीं थे तब भी स्तुति कर रहे हैं, एवं स्तुत सुरगणे, और अब भगवान प्रकट हो गए फिर भी अब स्तुति करने जा रहे हैं। एक आचार्य कहते हैं कि भाई भगवान के सामने स्तुति नहीं करे तो क्या करे, स्तुति के अलावा भगवान को देने के लिए हमारे पास क्या है, क्या दे सकते हैं हम भगवान को। भगवान को हम प्रणाम कर सकते हैं और स्तुति कर सकते हैं, और कुछ भगवान को देने के लिए, कुछ लोग 10 रुपया दे देते हैं मंदिर में, हमने कितना दिया, अरे मूर्ख ये 10 रुपये के लिए भगवान मंदिर में खड़े नहीं है, 10 रुपया दे देते हैं तो लगता है बहुत दे दिया, अरे अनंत कोटि लक्ष्मी के नाथ हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जिस भगवान की सेवा करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं, वो भगवान तुम्हारे 10 रुपये के भूखे नहीं है, भाव देखते हैं भगवान, भावग्रही जनार्दन। और कुछ लोग कहते हैं हम तो भगवान के ऋण में नहीं है, क्या खाक नहीं है, इस शरीर के चमड़े के आज जूता बनाकर भगवान के मंदिर में रखेंगे फिर भी भगवान ने जो दिया है उसका ऋण चुका नहीं पाएंगे। विचार तो करो भगवान ने क्या नहीं दिया है हमको, इतना सुंदर शरीर भगवान ने दिया जिसकी कोई कीमत ही नहीं आंक सकते। अब जानते हैं शरीर की क्या कीमत है, मैं आपको कहूं कि आप अपने दोनों हाथ काटकर मुझे दे दो 5 लाख रुपया दूंगा, कौन तैयार है, आप दोनों पांव काटकर दे दो 10 लाख रुपया दे दूंगा, कौन दे सकता है, आप अपना मस्तक काटकर यहां रख दो 50 लाख दूंगा, तो इसका अर्थ यही हुआ ना आपके मस्तक की कीमत 50 लाख से ज्यादा है, हाथ की कीमत 5 लाख से ज्यादा है, आप जोड़ते रहो अनंत कीमत हो जाएगी। इतना कीमती शरीर दिया, शरीर को टिकाने के लिए हवा पानी प्रकाश, ये सूर्य भगवान यदि ये सूर्य को खड़े न रखते तो बिल भर भर के मर जाते हम लोग, लाइट बिल कितना आता है, और यदि ये ऑक्सीजन भगवान नहीं दिए होते तो कभी हॉस्पिटल में गए ऑक्सीजन की बोतल कितनी महंगी है, एक सेकंड के लिए विचार कर लो कि आज तक जितना ऑक्सीजन हमने शरीर में डाला है इसका बिल भगवान ने भेज दिया, भर पाओगे, 10 जन्म भी बीत जाए फिर भी नहीं भर पाएंगे। और कहते हैं भगवान को हमने इतना दे दिया, क्या दे सकते हैं भगवान को, प्रणाम और स्तुति के अलावा कुछ नहीं दे सकते। इसलिए एवं पुनः स्तोतुम प्रवुत्तो, फिर से ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, और अब जो ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं भगवान सामने खड़े हैं और ब्रह्मा भगवान की स्तुति, अद्भुत स्तुति कर रहे हैं। श्री ब्रह्म उवाच, अजात जन्म स्थिति संय माया गुणाय निर्वाण सुखार्णवाय अनोरणिम्ने परिगण्य धामने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति कर रहे हैं, अजात जन्म स्थिति सही है, ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं, क्या स्तुति कर रहे हैं, अजात जन्म स्थिति संय माया। देखिए ये स्तुति भागवत में बहुत सारे विषय हैं, उन विषयों में ये स्तुति जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये सब स्तुतियों में बहुत सारे उपदेश सिद्धांत छिपे हुए हैं। यहां पर ब्रह्मा जी भगवान को आप श्लोक देखोगे तो आपको पता चलेगा, कहते हैं अजात जन्म, हे प्रभु अजात माने कभी नहीं, और जन्म आपका जन्म कभी नहीं होता है, और फिर कहते हैं अजात स्थिति, आपकी उपस्थिति कभी नहीं होती है। अजात संयमाय, हे प्रभु आप कभी नहीं मरते हो। अब जन्म ही नहीं होता है तो मरोगे कहां से। अगुणाय, हे प्रभु आप निर्गुण हो, परंतु निर्गुण किसे कहते हैं यह सब हम धीरे धीरे समझेंगे। हे प्रभु सुख अर्णवाय, आप सुख के सागर हो। अणोर अणिम ने, आप अणु से भी अणु परमाणु के समान सूक्ष्म हो। परिगण्य धाम ने महानुभावाय, आपका धाम परम ऐश्वर्यवान है। नमो नमः, ऐसे भगवान विष्णु हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए इस श्लोक की व्याख्या थोड़ी सी की जाए। सबसे पहले कहते हैं अजात जन्म। हे प्रभु आपका कभी जन्म नहीं होता है, तब तो निराकार वाले नाचने लगेंगे। देखो ना, हम कहते थे ना कि ये भगवान का कभी जन्म नहीं होता है, इसका कभी शरीर नहीं होता है, ये लिखा है भागवत में, पर आप कहते हो साकार है। लेकिन भागवत के श्लोकों को समझना चाहिए। श्लोक होते हैं, उसका अर्थ होता है, उसका तात्पर्य होता है, उसका भाव होता है। अजात जन्म, हे प्रभु आप जन्म से रहित हो, आपका जन्म नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसके बहुत सारे अर्थ। पहला अर्थ, हे प्रभु आपका जन्म नहीं है, इसका अर्थ है आपका हमारी तरह जन्म नहीं होता है। इसका अर्थ यह है आपका जन्म तो होता है परंतु हमारी जैसे नहीं होता है। हमारा जन्म कैसे होता है? माता के गर्भ में रहना, 9 महीने तक रहना, कष्ट भोगतना, इस प्रकार से आपका जन्म नहीं। शिपा छिद्र स्वामी कहते हैं श्री मूर्ते अयम आविर्भाव, अयम अभी अभी आपका जो आविर्भाव हुआ है ऐसे आपका जन्म होता है। प्रकट, आप प्रकट होते हो, अप्रकट होते हो, आपका जन्म नहीं होता है। भगवान का, भगवान के लिए जन्म शब्द नहीं उपयोग किया जाता है, भगवान के लिए आविर्भाव और तिरोभाव शब्द इस्तेमाल किया जाता है, या प्रकाट्य प्राकट्य और प्राकट्य। तो कहते हैं प्रभु आपका जन्म हमारी तरह नहीं है। हमारा जन्म तो 9 महीने तक गर्भ में रहना, परंतु आप तो प्रकट ही हो जाते हो। और हमारा जन्म होते हैं तो जन्म होते ही वो बालक मूढ़ होता है, क्या करना नहीं करना कुछ ज्ञान, बालक को अपने बारे में भी ज्ञान नहीं होता है। और भगवान का जब जन्म होता है तो अपने बारे की बात छोड़ दीजिए, उनके माता पिता के 3 जन्म की कथा मालूम है। कृष्ण का जन्म कंस के कारागार में मथुरा में हुआ, जैसे ही जन्म हुआ कृष्ण का अपने माता पिता के 3 जन्म की कथा बता दी। इसे कहते हैं भगवान। जानते हैं कथा? देवकी और वसुदेव डर रहे थे, तब कृष्ण ने कहा कि माता पिताजी आप डरिए मत, मैं साक्षात भगवान हूं। आप पिछले जन्म में कश्यप और दीति थे, अदिति थे, और आपने मेरी उपासना की इसलिए मैं आपका पुत्र बना हूं। उसके पिछले जन्म में आप प्रिश्नी और सुतपा थे और मैं आपका पुत्र, और उसके पिछले जन्म में मनु और शत्रुपा थे। 3 जन्म का इतिहास जन्म से ही। इसे कहते हैं भगवान। आज कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं, उसको पूछना चाहिए जन्म होते ही आपने अपने माता पिता को ज्ञान दिया था? अब उस बालक को ही नहीं पता है खुद क्या है। परंतु ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रभु अजात जन्म, आपका जन्म नहीं, इसका अर्थ यह है आपका हमारे जैसा जन्म नहीं है। हमारा जन्म होता है तो अज्ञान में जन्म होता है, तो हमारे जैसा जन्म, ये पहला अर्थ। दूसरा अर्थ गोस्वामी गीतेलाल कहते हैं न जाता कर्म अधीना जन्मा दयो। ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु, हे विष्णु आपका जन्म नहीं है, इसका अर्थ प्रभु आपका हमारे जैसा जन्म नहीं। हमारा जब जन्म होता है तो कर्म के अधीन होकर जन्म होता है, कर्म के वशीभूत होकर जन्म होता है हमारा जन्म। अब कोई गधा बनना चाहता है परंतु बेचारे को बनना पड़ता है, कोई सुअर बनना चाहता है, बनना पड़ता है। तो कुछ लोग तर्क करेंगे भगवान भी सुअर बने। अरे भगवान सुअर बनते हैं अपनी इच्छा से, संसार के लोग अपनी इच्छा से सुअर बनते हैं, बेचारे को जबरदस्ती यमराज जी बनाते हैं। हमारा जन्म हमारे हाथों में नहीं है, भगवान का जन्म भगवान के हाथों में है। वे जहां चाहे वहां जब चाहे तब जन्म ले सकते हैं। यदि हमारा जन्म हमारे हाथों में होता तो फिर सब लोग धीरूभाई अंबानी के घर पे ही जन्म लिए होते। ये राजस्थान की गर्मी खाने के लिए यहां क्यों जन्म लिए होते है? इसका अर्थ है कि हमारा जन्म कर्म के अधीन होता है, परंतु भगवान का जन्म कहते राम कृष्ण वामन आदि नाम तू न कर्म अधीन जन्मादय। तो मानो कुछ लोग तर्क करे कि राम कृष्ण वामन इत्यादि का तो जन्म हुआ, तो गोस्वामी गिरधरलाल कहते हैं कि न तू कर्म अधीन, ये राम कृष्ण वामन इसका जन्म कर्म के अधीन नहीं हुआ, स्वतंत्रता से अपनी इच्छा से स्वेच्छा से उन्होंने जन्म लिया। किंतु स्वेच्छा और अपनी इच्छा क्यों थी? भक्त रक्षा अर्थ प्रादुर्भाव आदि मात्रम अतो न कोपि विरोध। ये राम कृष्ण वामन वरा ये जितने भी लोगों ने जन्म लिया उतार लिया अपनी स्वेच्छा से भक्तों की रक्षा करने के लिए, भगवान अवतार लेते हैं भक्तों की रक्षा करने के लिए। और हमारा जन्म हमारी रक्षा भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु आपका जन्म हमारे जैसा नहीं है, इसलिए अजात जन्म आपका जन्म नहीं है। इसका तीसरा अर्थ ब्रह्मा जी कहते हैं हे प्रभु आपका जन्म नहीं है, इसका अर्थ जैसे हमारा रज वीर्य से जन्म होता है वैसे आपका जन्म नहीं होता है। भगवान का जन्म किसी रज वीर्य का विकार नहीं है, भगवान सच्चिदानंद देह है, सत्चित आनंद से बने हैं। भगवान को जन्म लेने के लिए किसी के गर्भ का किसी के रज वीर्य का सहारा लेना नहीं पड़ता, वैसे ही प्रकट होते हैं। सप्तम स्कंद में प्रहलाद की रक्षा करने के लिए खंभे को तोड़कर प्रकट हो गए, वहां तो माता पिता बनाने का भी समय नहीं मिला भगवान को, दिखा दिया भगवान ने कि मैं स्वतंत्र हूं, कभी भी कैसे भी और कहीं भी जन्म ले सकता हूं, इच्छा कर दूं तो खंभा तोड़कर प्रकट हो सकता हूं। भगवान ने दिखा दिया उन भक्तों को, जो लोग कहते हैं ना कुछ लोग कि आप पत्थर को क्यों पूछते हो, कुछ लोग कहते हैं आप पत्थर को क्यों पूछते हो, भगवान ने दिखा दिया यदि भक्ति है श्रद्धा है तो मैं पत्थर से भी प्रकट होता हूं, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाऊं। राम अवतार के पहले इसी प्रकार ये सब देवता चिंतित हैं, वैसे सभी देवता चिंतित थे पृथ्वी माता के दुख को लेकर, पर भगवान को प्रकट करना था। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान कैसे प्रकट होंगे, कहां मिलेंगे कहां मिलेंगे? तब शिव जी ने कहा था हे उमा, जब यह प्रश्न चला कि भगवान कैसे प्रकट होंगे कहां मिलेंगे, तब मैंने जवाब दिया, उस सभा में मैं भी बैठा था और मैंने कहा था कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान कृष्ण भगवान हरि सर्व व्यापक सभी जगह पर है, परंतु प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना, परंतु उसे प्रकट करने के लिए प्रेम करना होगा। और बताइए निराकार से कोई कैसे प्रेम कर सकता है? प्रेम करने के लिए रूप चाहिए। मान लो कोई पिताजी अपने लड़के को कहे कि तुम प्रेम करो, बोले किससे? एक लड़की से। मैं तुम्हारी मंगनी करके आया हूं और जिससे तुम्हारी मंगनी करके आया हूं उससे प्रेम करो। तब पुत्र कहेगा ना पिताजी कैसे प्रेम करूं बताओ तो सही, वो कैसी दिखती है, आप मुझे लेकर तो नहीं गए, परंतु आप कहो तो सही कैसी दिखती है, तब मैं प्रेम करूं। पिता कहे नहीं हो तो निराकार है, ये क्या खाक प्रेम करेगा, किससे प्रेम करेगा? अरे प्रेम तो उससे होता है जिसका रूप हो, सुंदर हो। तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, शिव जी ने उस समय कहा था कि उस हरि को प्रेम करेंगे तब प्रकट होंगे। तो भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। यहां पर ब्रह्मा जी कहते हैं अजात जन्म, हे प्रभु आपका जन्म नहीं है, इसका चौथा अर्थ कि आपका जन्म हमारे जैसा नहीं, मतलब आपका कभी जन्म आपका हमारी तरह जैसे हमारे इस शरीर का जन्म होता है वैसे आपके शरीर का जन्म नहीं होता है, क्योंकि हम में शरीर और आत्मा में भेद है, परंतु भगवान में शरीर और आत्मा नहीं, भगवान का शरीर ही सत चित आनंद से बना है, सुपर सोल। हमारी रफ लैंग्वेज में कहा जाए तो जैसे हमारा स्वरूप आत्मा सच्चिद आनंद, तो भगवान एक बड़ी आत्मा है। इस प्रकार भगवान का अद्भुत स्वरूप है। तो जैसे आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है तो परमात्मा का कैसे जन्म होगा? गीता में पहला उपदेश भगवान का, न जायते म्रियतेवा कदाचित नायम भूत्वा भवितावान भूयम अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो नान्यते अनिमाने शरीर। न जायते, जायते माने जन्म, न माने नहीं, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है। बताइए आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है तो परमात्मा का कैसे होगा? तो इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं अजात जन्म, हे प्रभु आप परम परमात्मा हो, आपका कभी जन्म नहीं है। तो विराम दिया जाए। देखिए इसे कहते हैं जिज्ञासा, उत्साह। प्रभु जी कहते हैं 15 मिनट ले लो, यह है उत्कंठा।